say the English translation word to word? Or
We have it at the back.
You have it at the back, yes. You have it at the back, or log khud bhi likh sakte hain if you want, but main ek dafa padh leti hu just so that everybody has it. Main ek dafa urdu mein bhi padh leti hu. First part ka hum kal kar chuke the. I'll start from the second part. Allahumma, O Allah, in if kunta is ta'lamu, you know, anna that, hadha this, al-amr, the matter, khayrun, good, leave for me, fi in deeni, my deen, wa ma'ashi, my livelihood, wa aqibati amri, together means my hereafter, also if you break it up, the result, like the result of my task, faqdurhu li, so ordain it for me, wa yassirhu li, and make it easy, leave for me, thumma then, barik, bless, leave for me, fihi in it. Wa in and if kunta is ta'alamu, you know, anna that hadha al-amr, this matter, shagrulli, evil, bad, or harmful for me, fi deeni, in my deen, wa ma'ashi, in my livelihood, wa aqibati amri, and my hereafter, or my end affair, or my final task. Faslifhu, so remove it, anni, from me, wasrif me, and remove me, anhu, from it. Waqdur, and ordain, leave for me, al-khayra, the good, haythu, wherever kana it is, thumma then, al-dini, make me be satisfied, be he with it. So that would be, if I went too fast, I can always talk again with you later.
جی میں اس کو کر دوں گی انشاءاللہ.
ہم لوگ پھر شروع سے لے کے اینڈ تک اس دعا کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. آپ نے نوٹ کر لیا نا where we have to pause.
اللهم انی استغفرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير في حياتي وأرضني به.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ روز کی دعا یاد کرتے اور اسی طرح ہو بھی جائیں گی نا. تھوڑی سی یہ لمبی دعا ہے لیکن کچھ دعائیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں نا, تو مینیج کر لیں. اور اگر ایوری ڈے کی ایک دعا کو اگر ہم ریشو بنائیں تو الحمدللہ ایک مہینے میں اگر آپ 16 نئی دعائیں سیکھ لیں تو عام طور پہ تو اتنی نہیں ہوتی نا. تو ہمیشہ اس کو سیریس لیں. یہاں چونکہ ٹائم لمیٹیڈ ہے نا ہمارے پاس, تو ایک دفعہ دو دفعہ جو کہلا دی جائے, گھر جا کے پریکٹس سے کریں, دیکھ کے پڑھیں اس کو, اپنی روز کے روز ڈے ون سے لے کر آج تک کی جتنی ہے اس کو دہرائیں. ٹھیک ہے, یاد اگلی کریں لیکن دہرائیں پچھلی کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو غیر محسوس طریقے سے یہ ساری دعائیں یاد ہوں گی. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنی ہم پریکٹس کرتے ہیں, جتنا ہم کسی چیز کو سیریس لیتے ہیں نا, اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ بالکل. چیک کریں آپ کے ٹیبلز ریڈی ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کسی کے ایک آفس ٹیبل ہے اور فائلوں کے بھرمار ہے, اور آپ پتہ نہیں کریں گے کیا. ایک راز کی بات پوچھوں, کچن میں جب کام کرتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ کاؤنٹر کو پھیلا کے خوب ماشاء اللہ سجا بنا کے کام کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ساتھ ساتھ سمیٹتے رہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. चलिए आप देखिए कि अपना टेबल जो है ना, मैं अपने जहन से सोचती हूँ, मैं इवन अपने टेबल के बारे में बहुत क्यूरियस होती हूँ, आते ही सबसे पहले मैं इसको सेट करती हूँ। मुझे लगता है टेबल टेबल इज़ माय माइंड, मेरे जहन के अंदर वो सब कुछ होगा जो मेरे टेबल पे होगा। अगर मेरी टेबल बिखरी होगी ना तो मेरा जहन बिखरा होगा, माई माइंड विल बी स्कैटर्ड। हर वो चीज़ जो इस वक्त आपकी तवज्जो ले रही है उसको हटा कर बैग में रख दें। इस वक्त ये पढ़ रहे हैं तो यही हो, कोई दूसरी बुक, कोई दूसरे नोट्स ये भी नहीं होने चाहिए। और फिर एक बार के जब आप पेज पलटें तो कैसे पलटना है कि आपके साथ हले को भी आवाज़ ना आए, इंशाल्लाह ताला। चलिए शुरू करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। ये जो धम धम आवाज़ें थोड़ी ना, ये भी हमारी अब्जॉर्प्शन में कमी करती हैं। आप ख़ुद फील करेंगे कि जब इन आवाज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं ना तो उसके बाद एकदम ऐसे लगता है कि हमारा अंदर भी बहुत ही मुतमईन हो गया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस्लाम ए टू ज़ी के किस किनारे पे खड़े हैं। मैं अगर एक स्ट्रेच में पूछूं कि इस वक्त हम इस्लाम के किस हिस्से में हैं, नामों में नहीं, तशबीह में, तने पे, राइट स्टेम। जड़ें क्या थी? अकायद। ठीक है, जड़ों में से क्या फूटता है? तना। तना क्या है? इबादात है। नीचे से जड़ें कटी हों तो इबादात कैसी होंगी? फीकी होंगी। बहुत सारे लोगों ने जड़ों को एंजॉय किया होगा, आजकल हो सकता है रेपिटिशन लगे, हो सकता है टू मच लगे, कुछ को ऐसे लगे कि ये तो बहुत दफ़ा पड़ा है, और हो सकता है कुछ को बिल्कुल नया भी लगे। याद रखिए कि जो कैफियत आपकी क्लास में होगी ना इबादात के टॉपिक पे, ये आपके इस बात का ताल्लुक का इजहार होगा कि आपके जड़ों के साथ आपका तना कितना को जुड़ा हुआ है। अक्सर नमाज में दिल नहीं लगता, हालांकि कुछ और इबादात है उसमें लोग दिल लगाते हैं। वजह क्या है कि नमाज की जब रूह नहीं होती तो नमाज नमाज नहीं होती। वो बस वही बात है कि ये तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, कि तू झुकता कहीं और है, दिल तेरा कहीं और है। जो भी शायर ने कहा था, मतलब यही है कि हम सजदे तो अल्लाह को करते हैं लेकिन दिल कहीं और झुकता है। तो इस वक्त अपनी क्लास की कैफियत को आप अपनी नमाज के साथ रिलेट करें। अगर नमाज में मज़ा आता है तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर के जड़ जुड़ी हुई है। ताल्लुक बिल्ला की डोरियाँ हमारी इबादत की सूरत में इस तरह बंधी हुई हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हुए वाकई वो सारा कुछ महसूस कर रहे होते हैं जो कि होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने क्या की? दूसरी चीज़ ज़कात को कर ली हमने। ज़कात का मौजू अमूमन देखिए कि हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा कम जिक्र किया जाने वाला मौजू है, और ज़कात के लफ्ज़ के साथ जो मिसकॉन्सेप्शन थे उसको हमने देखा। मेरे जहन में जो भी पढ़ाने के बाद भी आपके लिए जो चीज़ आई वो यही थी कि अल्लाह ने एक सिंबल बनाया, इतना कुछ मैंने तुम्हें दिया जिसको मिम्मा रज़क ना हम युनफिकून कहेंगे, लेकिन उसमें से लीस्ट फ़र्ज़ के दर्जे पे 2.5 रखा। कोई ज़मीनों का काम करता है, फसल है तो 10वां हिस्सा रख दिया, पानी का कोई इशू है तो 20वां भी कर दिया, ऐसे ही है ना। ये चीज़ अगर आप इस वक्त ज़रा सी ज़कात की रूह को समझें, अगर यही चीज़ दैट्स इट, जितना अल्लाह ने कह दिया ये भी अगर सारे कर लेते, सारी उम्मत करती, तो एक दुनिया मुख्तलिफ रंग का इजहार देती। लेकिन ये सिर्फ मनी मैटर्स नहीं है। आज एक चीज़ लेकर सोचिएगा कि माल में से तो 2.5 देती हूँ, वक्त में से कितना देती हूँ अल्लाह को? आप 24 घंटे को जाकर छोटा छोटा उसका ब्रेकडाउन करके देखिएगा ना, तो बहुत भी खुशू बहुत भी खुदू के साथ 5 नमाजें पढ़ लें, एक घंटा फिर भी नहीं लगता। 10 मिनट में 4 फ़र्ज़ बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। चलिए एक घंटा फ़र्ज़ की इबादत में गुजर गया। आजकल चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इस कोर्स में रखा हुआ है, क्लासेस ले रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन 4-4 घंटे ये हो गए, टोटल कर लीजिए 1 और 4 5 घंटे हो गए ना, 19 घंटे अभी भी पीछे हैं। और अगर ये कोर्स ना कर रहे होते तो 2.5 भी पूरा नहीं बनता। जो बात समझाना चाह रही हूँ, इल्म एक ऐसी दौलत है कि आपके 100 में से 98% को अल्लाह का कर देता है। टीचर सिर्फ 3-4 घंटे का नहीं होता, और स्टूडेंट भी सिर्फ 3-4 घंटे का नहीं होता। आप यहाँ आते हैं तो बाद में सोचते हैं, बाद में होमवर्क करते हैं, आपके दिल दिमाग पे रहता है। इसी तरह जो साथी हैं वो तैयारियाँ करते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो रूम सेट कर रहे हैं, कुछ बाकी चीज़ों में। तो कहने का मतलब है कि इल्म एक ऐसी इबादत है, इल्म एक ऐसी इबादत है कि जो आपको मुझे 24 का कह लीजिए कि 24 आवर का अल्लाह ताला का बंदा बनाती है। और जब मज़ा आने लगे इसमें तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना। तो हमेशा लीस्ट मिनिमम पे रहने की बजाय व्हाट कैन बेस्ट आई डू, मैं इससे और अच्छा क्या कर सकती हूँ, ये करना है। आज हम इंशाल्लाह ताला एक तीसरी इबादत की मारूफ किस्म जिसको रोज़ा कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इस पे बात करना रियली मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ जो हर साल रमज़ान से पहले, तकरीबन हर साल ही एक महीना पहले वेलकम रमज़ान के लेक्चर्स शुरू हो जाते हैं, रोज़ा, रोज़े की असल, हसूल तकवा, रोज़ा, रोज़ा और इखलास, रोज़े के मकासद। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पिछले 5 सालों के भी वेलकम रमज़ान के लेक्चर सुन लें तो आपको रोज़े का मौजू समझ आ जाएगा। फिर सबसे पहले जो बुक मैंने खुद पढ़ाई थी रोज़े के मौजू पे वो सौम रमज़ान थी। आप में से कितनों ने पढ़ी है? यहाँ नहीं पढ़ी। अतीक इस साल रमज़ान से पहले ये लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बिलीव मी कि जब मैंने वो खुद वो बुक पढ़ाई और मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मैं ये सोच रही थी कि आज तक ये बुक किसी और ने क्यों नहीं पढ़ी पढ़ाई। इज़ सो ब्यूटीफुल शॉर्ट टॉक, यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ दी रमज़ान और रोज़ा। कल जो मैंने एक बात छोटी सी शेयर की थी आपके साथ कि मोमिन की सारी ज़िंदगी रमज़ान है और ईद का दिन जो है ये उसकी आखरत का सिंबल है। इस दुनिया में तकवा के साथ जियो, वहाँ अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी देगा। ये जो हम चाहते हैं ना कि यहाँ भी हमारी मर्ज़ी और वहाँ भी हमारी मर्ज़ी, इस मर्ज़ी को तोड़ने के लिए अल्लाह ने एक इबादत रखी है जिसको हम रोज़ा कहते हैं। सौम रमदान। रोज़ा क्या है नोट कीजिएगा, मखसूस दिनों में मखसूस शराइत के साथ मखसूस चीज़ों से रुक जाना रोज़ा कहलाता है। ये तारीफ़ फ़तहुल बारी की जिल्द 4 में 592 पेज पे मौजूद है, यानी बुखारी की शरह जिसको आप कहते हैं फ़तहुल बारी, और अगर सही मुस्लिम की शरह जिसको नववी कहते हैं शरह मुस्लिम, उसके पेज 200 जिल्द 4 पे मौजूद है। अब आप, मैं तो रोज़े को अपने हिसाब से सोचते हैं ना, लेकिन रोज़ा के ख़ास चीज़ें, अब ख़ास चीज़ों में क्या, नंबर एक खाना पीना, फिस्को फजूर, और दिन में शौहर बीवी का ताल्लुक़, यानी रोज़े की कैफियत में इसका ताल्लुक, और ये सारे ही जो काम है इसमें खाना पीना और आखिरी चीज़ ये तो फजर से लेकर मगरिब तक है ना, लेकिन जो फिस्को फजूर है ये सिर्फ रोज़े में नहीं बल्कि ये पूरी ज़िंदगी में भी है। क्या पता चला कि अल्लाह सुबहाना ताला ने रोज़े रखवा कर आपको मुझे अकली तौर पर इस बात का मुकल्लफ कर दिया कि हकीकत समझ आए कि ना आए बात मानो। वही हलाल खाना सहरी के वक्त के ख़त्म होने से 1 मिनट पहले हलाल था और एक वक्त पूरा हुआ, हमारे यहाँ तो इसको अजान से जोड़ते हैं, अजान से तो इसका ताल्लुक नहीं है, एक ख़ास वक्त जहाँ तक वो वक्त मखसूस है, उसके बाद अब वो पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकते। ये है असल में रुकना, ख्वाहिशों को काबू में पाना, जितना ज़्यादा अपनी मर्ज़ी को छोड़कर अल्लाह के आगे झुकेंगे उतनी रोज़े की असल रूह समझ आएगी। क्योंकि बहुत सारे रम लोग ऐसे हैं कि जो ज़िंदगी भर रोज़े से रहते हैं, कैसे, अल्लाह की फरमाबरदारी पे। नाराज़गी वाले काम छोड़ दीजिए, आप साइमो दहर हैं, अल्लाह ने आपको मुझे हर वक्त 24 घंटे और पूरा साल रोज़े से रहने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं रोज़े रखता भी हूँ और बग़ैर रोज़े के भी होता हूँ। फ़र्ज़ रोज़ों के साथ कुछ सुन्नत रोज़े, कुछ नफिल रोज़े, कुछ वाजिबात में डाल दिए, मकसद ये सारी चीज़ों से सज़ा देना नहीं था। तो लिखिए कि रोज़ा सज़ा नहीं है। आज वेस्ट में रहते हुए हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो समटाइम पिटी फीलिंग्स आती हैं, ओ यू मुस्लिम की फास्टिंग, ओ यू फास्टिंग। हालांकि आपको पता है कि हर कौम के अंदर रोज़े थे। सबसे पहले किस कौम ने रोज़े रखे थे? हज़रत नूह की कौम ने। यानी हर दौर में रोज़ा किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा। तो बस बुनियादी तौर पे चंद जुमले लिख लीजिए रोज़े के लिए, और वो क्या है कि इस्लाम क्या है, کہ انسان اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے. روزہ ہر سال یہی سبق دینے کے لیے فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے اللہ کے لیے خواہشوں پر روک لگا لو. خواہ روک لگانے کی فہرست کھانے پینے کی چیزوں تک پہنچ جائے. نوٹ کیجئے، ہم کیا کہتے ہیں روزے کا مطلب کھانا نہیں پینا نہیں. یہاں میں نے ابھی جملہ کیا بولا ہے؟ خواہشوں کی روک. چاہے پھر اس کا اطلاق کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی چلے جائے. مراد کیا ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں. اللہ کے نبی کی روایت، اب آپ کی روایت ہے بخاری میں، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَمْ يَلْ بِهِ، جس نے جھوٹی بات کہنی اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اَن يَدَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ، کہ وہ پینا چھوڑے یا کھانا چھوڑ دے. پھر اسی طرح روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات واضح. اور روزے سے مطلب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ روزے کے مقاصد میں کیا ہے، مطلب یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ناجائز چیزوں سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لے. رمضان اسی قسم کی روزہ دارانہ زندگی کی ایک تیاری کا نام ہے. اور روزے کے مقاصد میں ایک یہ بھی ہے، کیا؟ کہ کبھی ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے اور ایک مطلوب چیز بھی غیر مطلوب ہو جاتی ہے. تو پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ ڈسپلن، پرہیزگاری، تربیتی کورس. یاد رکھیے کہ روزہ بھوک پیاس کی سالانہ رسم نہیں ہے. اٹس ناٹ این اینول سیرمنی کہ آپ بھوک چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، ویٹ لوز نہیں ہے، ڈائٹنگ نہیں ہے. روزہ اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے. اگر یہ جیمز آپ کو یاد رہ گئے نا، تو باقی ساری فقہی باتیں اور جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ تو آپ سب کو زبانی بھی آتے ہوں گے، میرا گمان ہے آپ کے بارے میں. لیکن اصل میں روزہ آپ کے میرے اخلاق کو ڈسپلن کرتا ہے. کہاں رکنا، کس بات کو سن کے چپ کر جانا، کس کو پی جانا، کس کو برداشت کرنا، کہاں جواب دینا، کہاں نہ دینا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے مقاصد میں ایک کیا ہے؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، کھانے پینے کے معاملے میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی. اور یاد رکھیے کہ ہر رکن اسلام، آج کل کیا پڑھ رہے ہیں ہم، ارکان اسلام ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فائیو پلرز آف اسلام. روزے کے ساتھ آگے حج بھی آ رہا ہے نا، اور پیچھے باقی بھی پڑھ لیے. چند جملوں میں لکھ لیجئے کہ مقاصد کیا ہیں. ہر رکن کے پیچھے کوئی چیز ہے نا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، نماز کس چیز کی دلیل ہے؟ سوچئے ذرا، مطلب دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی سیتھنگ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ سیل فون پکڑتے ہیں تو مقصد سیل فون تو نہیں ہے، بات کرنا ہے نا. آپ کھانا پکاتے ہیں تو مقصد کھانا کھانا تو نہیں ہے نا، انرجی لینا ہے نا. آپ شاور میں جاتے ہیں تو مراد شاور نہیں ہے، شاور سے مراد گندگی کو دور کرنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے تو ایک اس کے اندر باتیں ہیں. آپ کے فون کی ایک ظاہری شکل، رنگ روپ ہے، اور ایک اس کے اندر کی مشینری ہے. اسی طرح ہر ریچول، ہر رکن اسلام یا پلر آف اسلام کے اندر ایک نہ ایک چیز موجود ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کو سمجھے بغیر جب ہم یہ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو یہ رسم بن جاتی ہے. مثلا کلمہ رسم ہے، آج لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ پڑھ لو، 1,25,000 دفعہ پڑھ لو، یہ ہے وہ ہے. جب تک ہر رکن کی بات نہ سمجھے. مثلا آپ دیکھیے، سب سے پہلے ابھی تک، یعنی میں نے جتنا بھی اسلام اے ٹو زی پڑھایا نا، میں اس کو چند جملوں میں سمیٹنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے ہم نے ایمان پڑھا ہے نا، عقیدے کے اندر ایمان کی اسپرٹ کیا ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن دل کے اندر اعتراف ہو، یعنی اعتراف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی اسپرٹ اعتراف ہے. کس بات کا اعتراف؟ کہ اللہ اکبر و انی اصغر، اللہ سب سے بڑا، میں سب سے چھوٹی، اور میں ہی نہیں سب سے چھوٹی، سارے انسان بھی سب سے چھوٹے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس بات کا اعتراف कि इंसानों में सबसे बड़ी शख्सियत और काबिले तक़लीद शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये दो एतराफ़ बंदा करता है ना तो अंदर ईमान भरता है। अगली चीज़ नमाज, सलात की स्पिरिट क्या है, 5 वक्त आप और मैं मखसूस एक्शंस करवाए जाते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, ज़्यादा कम नहीं कर सकते, उसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अंदर रोज़ नमाज में आप अल्लाह के आगे झुकते हैं तो नमाज की स्पिरिट तवाज़ो है, टू बी हम्बल, ह्यूमिलिएशन। बंदा अपने रब के आगे इस तरह झुकता है कि वो घुमान बड़ाई, मैं अना, आई एम, मैं ब्रांडेड, मैं फुला, मेरा ये स्केल, मैं इतने बड़े अफसर की बेगम, मैं फुला, नहीं, ये सब ख़त्म। और एक बंदा फ़ख्र और किब्र को छोड़कर आजिज़ बंदा बनता है कि अल्लाह बस तेरे आगे आ गया हूँ, अब तू मेरी इज़्ज़त रख ले। उसके बाद ज़कात, ज़कात की एक ख़ास शक्ल हमने पढ़ ली, 2.5%। याद रखिए, ये एक ज़ाहरी चीज़ है लेकिन इसके अंदर खिदमत है, यानी स्पिरिट ऑफ ज़कात इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी, दर्दमंदी। आप ज़कात के साथ अपने आप को अल्लाह और बंदे दोनों से जोड़ते हैं, फ़र्ज़ आप अपना पूरा करते हैं, ठीक है, सुरखरू हो गए ना अल्लाह की नज़रों में, तो देते किसको हैं, अल्लाह के बंदों को देते हैं, तो पता क्या चला कि बंदा दूसरों के लिए मुफीद हो जाता है। फिर रोज़ा, रोज़े की स्पिरिट क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, सब्र। रोज़े का मकसद बंदे के अंदर सब्र पैदा करना है। जो शख्स रोज़ेदार होगा ना वो साबिर होगा। आम मिजाज है उसका क्या कि ना खुशगवार बातों को बर्दाश्त करेगा, वो लोगों की काबिले शिकायत बातों को नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा। हर वक्त जलता कुड़ता नहीं रहेगा, मेरी को सुनता नहीं, मेरी को मानता नहीं, और फिर वो जल जल के अपने आप साथ दूसरों को भी नहीं जलाएगा। कितने अफसोस की बात है, हर साल रोज़ा रखने वाली कौम, मस्जिदें भरी हुई और हज और उम्रे पे जाने की ख्वाहिशात, और रमज़ान का उम्रा, अल्लाह अकबर, और तरावियाँ और तहज्जुद और वहाँ जाकर करना, इसके बावजूद सिर्फ आपकी गाड़ी से आगे कोई गाड़ी खड़ी हो जाए तो हॉर्न पे हॉर्न, बम्पर टू बम्पर, छोटी छोटी बात पे तैश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, छोटी सी बात, बेगम ने खाना ठीक नहीं बना लिया तो उस पर गुस्सा आ गया, शौहर को आने में 4 मिनट देर हो गई तो गुस्सा आ गया, तो फिर आप कह लीजिए कि रोज़े की स्पिरिट नहीं है। और फिर आगे देखिए, हज, हज क्या है, वैसे तो आप ज़िंदगी में एक दफ़ा एक ख़ास तरीके से एक ख़ास मनासिक से गुजारे जाते हैं, ये तो आपका हज हो गया, लेकिन अंदर की स्पिरिट ऑफ हज इज़ इत्तेहाद, यूनिटी, और स्ट्रगल अल्लाह के रस्ते की जिद्दोजहद। जो आदमी सही कैफियत के साथ हज का फ़र्ज़ अदा करेगा ना, उसके अंदर से इख्तलाफी नफसियात का ख़त्म हो जाएगा, वो इत्तहाद और इत्तफाक का मिजाज अपनाएगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, डिफरेंस ओपिनियन, इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी राय मुझसे फ़र्क है, इट्स ओके, खैर आप में भी है। कल हमने अशरा मुबशरा में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो के बारे में पढ़ा था ना, जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हो का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, अब तो आपको पता लग गया ना क्यों हुआ, छोटी सी बात थी, वो कहते थे कि उस्मान के कातिलों का कसास लो, ये कहते थे अभी मुनासिब वक्त नहीं, बड़ी बात तो नहीं है, और दोनों में इख्तलाफ हुआ। जब ये जंग की तैयारियां हो रही थी तो उस वक्त का एक नॉन मुस्लिम हुक्मरान कोई भी था, उसने तो शुक्र किया। याद रखिए, गैर मुस्लिम की ख्वाहिश है और ख़ास तौर पर हुक्मरानों की कि मुसलमान आपस में लड़ें और हम खुशी खुशी इनकी मदद करें, फिर ये हमें सालिस बनाएं, हमसे मदद मांगे, हथियार बेचें, यही स्ट्रेटेजी मदीना में थी, आज भी कमो बेश होगी। खैर किस्सा मुख्तसर, उस शख्स ने अमीर मुआविया को ख़त लिखा, कहने लगा कि मुझे पता चला है कि तुम लोगों में आजकल अनबन है, बनी नहीं है, तुम्हारी गड़बड़ है, कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊँ। यानी उसने प्रवोक किया एक सहाबी को दूसरे के खिलाफ। ज़रा जवाब सुनिएगा, उन्होंने कहा खबरदार हमारे मामले में ना बोलना, ठीक है इस वक्त हमारा इख्तलाफ है लेकिन मैं अली को हक पे समझता हूँ और मैं भी हक पे हूँ, हमारा ये वक्ती एक सियासी इख्तलाफ हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि मैं तुझे एक मुसलमान के खिलाफ मदद मिले हूँ, और अगर तू अली के खिलाफ फौजें लेकर आया तो अली के दिफा में लड़ने वाला सबसे पहला मैं होऊंगा। ये है हज की स्पिरिट, अभी समझ लें, आगे पढ़ना है हमने। आज उम्मत अगर इन पांच कोर्सेज में से साल में कमोबेश किसी मौके पे गुजारी जाए तो क्या उम्मत की ये हालत हो? हमें स्पिरिट नहीं मिली, बिलीव मी, हमें नमाज मिली आजजी नहीं मिली, हमें रोज़ा मिला लेकिन सब्र नहीं मिला, हमें ज़कात मिली लेकिन खिदमत का जज्बा ना मिला, और हज करके भी आते हैं तो कुंद छुरियाँ बन के लड़ते हैं। हमारी जगह बेआबाद हैं, हमारे इदारों में इख्तलाफात है, एक से दूसरी पैदा होती है, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग बनती है, एक मस्जिद दो में बटती है, फिर दो से चार होती हैं। ये बांट नहीं थी मुसलमानों में। तो हज में कितने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इंसान देखता है। जिन्होंने हज किया उनको अच्छी तरह पता है, हज पे ना भी गए तो उम्रे पे जाके देखें, एक्सेंट फ़र्क, तरीका फ़र्क, रंग ढंग का फ़र्क, पहनावा फ़र्क, लेकिन सब एक ही काबे के पीछे के इर्द गिर्द घूम रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और दूसरी चीज़ हज में है अल्लाह के रास्ते की भाग दौड़, जिद्दोजहद, फ़फ़िरु इलल्लाह, तवाफ़ का मकसद। क्या पता चला कि जब आप और मैं हज को एक दफ़ा स्पिरिट से कर लें तो फिर हम सुस्त होके नहीं बैठ सकते। फिर हम ये नहीं रहम खा सकते, ओ सब तो घर में और मैं बाहर, सब तो बड़ी आरामदेह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मुझे रोज़ आना पड़ता है, और फिर जल्दी भी आना पड़ता है और देर से भी जाना पड़ता है, मेरे तो बच्चे भूखे। ये स्पिरिट हज के बाद पैदा हो जाती है कि जितना भाग दौड़ करेंगे उतना अल्लाह की नज़रों में जचेंगे। तो फिर रोज़ा रखते वक्त आपने नेक्स्ट टाइम क्या सोचना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये सारी रूह लेकर आऊं जो रोज़े की है। फिर आप देखेंगे कि जब हम रोज़ा रख लें और अल्लाह ने तो वजह ही बता दी लअल्लकुम तत्तकून, तो क्या ये नामुमकिन है? ये क्या ये बात मुमकिन फिर नहीं है कि आज तो आप हलाल भी छोड़ रहे हैं तो अमली ज़िंदगी में क्या फिर एटलीस्ट हराम नहीं छोड़ेंगे? बात समझ आ गई? देखिए ना, एक अच्छी चीज़ छोड़ रहे हैं आप किसी के कहने पर तो क्या बुरी नहीं छोड़ेंगे? एक माँ अपने बच्चे को जब समझाती है, ट्रेन करती है, कई दफ़ा वाकई वो उसको ऐसी चीज़ छोड़ने को कहती है जो अच्छी होती है, या ऐसा तकाजा करती है जो ना भी करे तो ठीक है, अगर बच्चा उस पर ओके कह दे तो फिर कल माँ के कहने पे बुरी चीज़ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? असल में इस रूह के साथ रोज़े रखने और सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए अल्लाह ने इसको फ़र्ज करार दिया आकिल पे, बालिग पे, मुस्लिम पे, पांच अरकान में से एक रुकन, लेकिन मरीज़ और मुसाफिर को छुट्टी, कोई बात नहीं, नहीं रख सकते बाद में रख लो, फ़ायदा तो मैंने यामी नुखर, दूध पिला लिए रही है एक औरत, कोई बात नहीं, अगर प्रेग्नेंट है एक औरत, बच्चे को नुकसान का ख़तरा, कोई बात नहीं, यानी कॉम्पनसेशन सिखाता है रोज़ा। ये भी एक मकसद नोट करें कि अकामोडेट करना सीखो। वो शख्सियात पैदा होनी चाहिए इबादत के नतीजे में जो इंसान दोस्त भी हों और खुदा दोस्त भी हों, जो अल्लाह के साथ भी खुश दूसरों के साथ भी खुश हों। और फिर हम तो फिकी मतों में उलझ गए, ये हो गया इसका क्या कफारा, ये छोड़ दिया तो वो क्या होगा? तो याद रखिए कि ज़िंदगी में इबादात को इंजॉय करें। वाकई इबादात इज़ जस्ट लाइक योर अल्लाह ताला के साथ उस ताल्लुक़ को महसूस करने का तरीका है। आप ज़रा सा सोचें ना, रोज़ा क्या है? एक राज है जो अल्लाह और बंदे के बीच में। आपको पता है किस वक्त मेरा रोज़ा है कि नहीं, और मुझे भी नहीं पता आपका रोज़ा है कि नहीं, इल्ला ये कि हम में से कोई ज़ाहरी तौर पर किसी के सामने कुछ खाए तो फिर ये तो यकीन है कि रोज़ा नहीं है, खाना छोड़ा तो। लेकिन झूठ का रोज़ा, गीबत का रोज़ा, तनकीद का रोज़ा, बात समझ रहे हैं ना? असल में रोज़ा एक राज है। खालिक की मोहब्बत में महबूब चीज़ों को छोड़ देने का नाम रोज़ा है। कोई वाकिफ ही नहीं है, यानी नमाज तो हर एक को पता लग जाती है पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं पता चल सकता। और क्यों? बुखारी की रिवायत 5927 लिख लें, बड़ी प्यारी रिवायत है, दसियों दफ़ा भी सुनी होगी कि इब्ने आदम का हर अमल उसका है सिवाय रोज़े के। ये मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका बदला दूँगा। और रोज़ेदार के मुँह की बास, यानी बैड स्मेल जो हो जाती है भूखे रहने से, अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर रोज़े की फजीलत क्या है? क्योंकि मैं अक्सर वो हदीस जो आपने भी सुनी होगी कि अगर बंदों को रोज़े का अजर पता लग जाए तो वो ख्वाहिश करें कि सारा साल रोज़े हों, सुनी भी है? तो मैं अल्लाह ताला से कई दफ़ा कहती हूँ, अल्लाह ताला अभी नहीं भी बताना फिर भी दिल करता है सारा साल रोज़े हों। और आप नोट करें कि रोज़े का खौफ ज़्यादा होता है, एक दफ़ा रमज़ान शुरू हो जाए वो रूटीन छोड़ने को दिल नहीं करता, जूं ही आखिरी अशरा शुरू होता है दिल अंदर से ना बुझने और कटने लगता है कि हाय पता नहीं इस वक्त क्या होगा, और बाद में दिल उदास हो जाता है। ईद वाले दिन दिल नहीं करता बाज़ दफ़ा खाने को। तो नोट कीजिए चंद रिवायात रोज़े की फजीलत की। बुखारी 1901 और मुस्लिम 760, रोज़ेदार के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कफ़ारतुल लिमा बैनहुम, यानी एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के बीच के रोज़े माफ़ होते हैं। फिर ये एक रिवायत जो ऊपर बताई है, ये भी दोबारा नोट कर सकें कि रोज़े का सवाब अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। बुखारी 1904, मुस्लिम 1151। फिर रोज़े के बराबर कोई चीज़ नहीं है, सही तरगीब 986। फिर रोज़ेदार के लिए जन्नत का वादा है, ये चौथा पॉइंट दे रही हूँ। बुखारी 1397 और मुस्लिम 14। फिर रोज़ेदार शुहदा के साथ होंगे, सही तरगीब 1103। नेक्स्ट, रोज़ेदार के हर अमल का अजर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, सही मुस्लिम 1151। जन्नत का दरवाज़ा रैयान रोज़ेदारों के लिए है, बुखारी 1896 और मुस्लिम 1। एक दिन का रोज़ा दोज़ख की आग से 70 साल तक दूर कर देगा, मुस्लिम 1153 और बुखारी 2840। रोज़ा क़्यामत के दिन सिफारिश करेगा, सही तरगीब 984 और मुस्नद अहमद 184 जिल्द नंबर 2। रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है, तिरमिज़ी 2616। और रोज़ेदार के मुंह की बू कस्तूरी से ज़्यादा पाकीज़ है, बुखारी 1903। रोज़ेदार को इफ्तारी के वक्त जहन्नुम से आज़ादी दी जाती है, सही इब्ने माजा 1332। रोज़े की वजह से आदमी और जहन्नुम के दरमियान ज़मीन और आसमान के बराबर आड़ कर दी जाती है, यानी जितना आसमान से ज़मीन और ज़मीन से आसमान दूर है, इतना रोज़ेदार जहन्नुम की आग से दूर हो जाता है। ये भी रिवायत सही अतरगीब 977। अब आप बताइए, 13 हदीसें मैंने आपको बोली हैं इस वक्त, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हिकमत क्या है रोज़े की? तकवा, सब्र, हमदर्दी, मोहब्बत और रहमत के जज्बात पैदा करना, यानी इन सारी चीज़ों को इंसान रोज़े में हासिल करता है। और सही मुस्लिम 6586 नंबर से आपको ये पता चलता है कि रोज़े की वजह से वाकई एक दूसरे के लिए दिल में रहम के जज्बे भी आ जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप रोज़ा रखते हैं ना, तो ज़्यादा बोलने को दिल नहीं करता ना, चाहे वो नकाहत ही सही, भूख की वजह से। असर के बाद सोचिए, ऐसे अधमुए होके पड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि रोज़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो अंदर खाते क्या हो रहा है आपको, आपको अंदर से अल्लाह तोड़ता है। चलो छोड़ो, कोई लड़े आप कहते अब क्या बोलूँ, बल्कि हुक्म भी क्या है कि अगर रोज़ेदार को कोई गाली दे तो क्या कहो, इन्नी साइमन, मैं रोज़े से हूँ, मैं नहीं बोलता। अब अगर ये कैफियत थोड़ी सी तवील होती जाएगी तो आमतौर पर आदत नहीं हो जाएगी, कह लो जो कहना है और भी कह लो, डांट रहे और डांट लो, गुस्सा करना है और कर लो, मेरे खिलाफ़ हो और हो जाओ, तो रोज़े से इंसान के अंदर फिर सब्र भी आता है, गालम गलोच से, लाहव लाब से बचने का आता है। कोई रोज़ा रख कर बहुत ही बदनसीब होगा जो गंदी चीज़ें देखे, ये तो फिर सुराख करने वाली बात है ना, आमतौर पर इंसान नहीं देखता। कई घरों में रमज़ान में ये टीवी को पर्दा करा दिया जाता है, उनके मुंह पे निकाब डाल दी जाती है, कई उसका रुख भी पलट देते हैं। ये पहले दौर की बातें थी, अभी भी करते होंगे, लेकिन चलिए कुछ भी सही, टाइम तो नहीं वेस्ट करते। फिर इसी तरह देखे, रोज़े से शुक्रगुजारी आती है कैसे, इफ्तारी पे मनपसंद चीज़ों को देखना। ज़रा सोचे, जितने तरह तरह के खाने रोज़ इफ्तारी के वक्त में हम खाएं या देखें, इतने पूरा साल में देखते हैं? इतने पकोड़े, समोसे, चना चाट, पापड़ी और मिल्क शेक और स्कंजवी और दूध सोडे कभी पिए? तो उन सबको देखकर शुक्र भी आता है ना। तो हमेशा याद रखिए, अल्लाह ने आपके मेरे लिए जो रखा है ना, वो सज़ा नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि रोज़े की शरायत भी कुछ है? बिल्कुल है, 4 शरायत। नंबर 1, इस्लाम, यानी रोज़ा मुस्लिम पे फ़र्ज़ है। नंबर 2, अक़ल, समझ भी हो। क्योंकि जो जुनूनी है या मजनून है उनसे अल्लाह ने कलम उठा दिए, अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की रिवायत है। फिर इसी तरह बलूगत प्यूबिटी, अब इसमें आप 19-20 का आगे पीछे कर लें, कौन सी उम्र, 10 साल है, 14 है, मैं इन चीज़ों पे बहुत नहीं पढ़ती। एक जुमला याद रख लें कि जहाँ फिकही इख्तलाफात आएँ वहाँ बर्दाश्त का रवैया अख्तियार करें। राजे और मरजूह का ओनली फ़र्क है, मतलब कौन सी चीज़, बस अब मैं इसको ऐसे कहती हूँ, एक तरफ 51 है ना तो दूसरी तरफ 49 है, 60 और 40 का फ़र्क हो सकता है, इट्स ओके, बर्दाश्त कीजिए। जब लोग बर्दाश्त नहीं करते ना तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि उम्मत बढ़ती है, फिरके बनते हैं, मस्जिदें कटती हैं, लोग ग्रोहों में बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों, अब आप कहते हैं अच्छा बलूगत है, अब सवाल पूछ लें आप मुझसे, अच्छा बलूगत 12 साल है कि 14 है, अच्छा जब नमाज़ फ़र्ज़ होती है फिर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, अच्छा फिर ये बताएं कि लड़के का कब, अच्छा 14 साल, भैया आप इन बातों में क्यों उलझते हैं? आप क्यों नहीं अपने 8-10 साल के बच्चे को रोज़ा रखाना शुरू कर देते? कुछ ज़रूरी है कि हदबंदी है कि अब आज बालिग हो गए तो कल से रोज़ा फ़र्ज़ है? इस तरह का तो कभी भी कट डाउन हुआ नहीं, हमेशा ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे होता है। ऑलवेज मेक द वेज फर्स्ट, वो रस्ते बनाइए जिन पे कल चलाना है बच्चों को। सहाबियत तो अपने छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाती थी, हदीस है पूरी कि वो बच्चों को रोज़े से रखती और जब वो रोते तो उनको खिलौना देती, मस्जिदों में लेकर आती और कपड़े के बने हुए खिलौने उनके सामने रख देती कि वो बहले। हजरत उमर के दौर में एक शख्स ने रोज़े की हालत में शायद शराब पी बाहर, तो आपने उसको दुर्रे लगवाए और आपने कहा हमारा तो बच्चा बच्चा रोज़े से है और तू रोज़ा रख कर, मतलब इस तरह रमज़ान में इस तरह के काम करता है, तो क्या पता चला बलूगत शर्त है। फिर चौथी चीज़, औरत हैस या निफास से पाक हो, बुखारी 1951 है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब आप रोज़ा रख लिया, आपके शराइत पूरी हो गई, तो क्या रोज़े के कुछ अरकान भी हैं? और वही बात आ गई कि रुकन वो चीज़ है कि जो मिस हो गया तो चीज़ मिस हो गई। तो नोट कीजिए, नंबर एक नियत, और नियत इरादतुल कल्ब है। तलुए फजर से पहले रात को फ़र्ज़ रोज़े की नियत ज़रूरी है, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत ज़रूरी है, और नियत दिल का अमल है। बुखारी की रिवायत 1 और अबू दाऊद 2454। दूसरा रुकन है इमसाक। इमसाक क्या है? सूरज निकलने से जो पहले का वक्त से लेके, यानी जो उसका वक्त है टोटल, इमसाक खाने पीने और औरत मर्द के ताल्लुक से रुकने के लिए। और तीसरा रुकन है वक्त, यानी पहली चीज़ थी नियत, दूसरा है इमसाक, इमसाक कहते हैं रुकने को मस्सा का, और तीसरा है वक्त, क्या है? तुलुए फजर से गरूबे शम्स तक, इससे मुराद पूरा दिन है, और सूरह बकरा 187 में इसकी दलील मौजूद है। ये तीन चीज़ें, यानी रुकना, नियत होना और किस वक्त से किस तक। सुन्नतें भी हैं कुछ, बिल्कुल सुन्नतें नोट कर लीजिए, और 5 सुन्नतें आपके सामने रखूंगी। नंबर एक, सहरी करना, रात के आखिरी हिस्से में रोज़े की नियत से खाना, मुस्लिम 2550। दूसरी सुन्नत के सहरी में ताखीर करना, यानी आखिरी वक्त पे खाना, सुबह सादिक के नुमाया हो जाने तक, बुखारी 1916। यानी कि रात को अब खा के ही सो जाएं कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता है, उस वक़्त मूड नहीं होता, दिल नहीं कर रहा होता, नहीं, और ये रिवायत है बुखारी 1916। तीसरी सुन्नत है रोज़े की इफ्तारी में जल्दी करना, सूरज गुरूब होने के फौरन बाद, बुखारी 1957 और मुस्लिम 2554। चौथी सुन्नत है खजूर या पानी से रोज़ा इफ्तार करना, अबू दाऊद 2356। अच्छा, हमारे कल्चर में भी एक सुन्नत है नमक से, फिर उस नमक को हमने पकोड़े में बदल लिया कि खाली नमक तो खा नहीं सकते। कई लोगों को लिटरली पहले टेबल पे नमक की चुटकी चखते हुए देखा है, मुझे तो नहीं मिला। खजूर ना मिले तो पानी, दोनों ही अवेलेबल थी उस दौर में। पांचवी सुन्नत क्या है? कि इफ्तार की दुआ मांगना, और वो इफ्तार के वक्त की दुआ जो है ना, उसमें जो बचपन से आपने सुनी पड़ी, ज़रा बोले क्या थी? अल्लाहुम्मा लका सुमतु वला रिज़्क़का अफ्तरतु। बचपन से सुनते हैं ना, रिवायत मौजूद है, अबू दाऊद की 2358 नंबर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिवायत नहीं है। जो ज़्यादा मसनून दुआ है, ज़हब ज़मौ व बतलतिल उरूक़ व सबतल अजरु इंशाअल्लाह। चली गई प्यास, तर हो गई रगें, और साबित हो गया अजर इंशाल्लाह। और ये कब पढ़ते हैं? कुछ लेके खाने की प्लेट ख़त्म करके नहीं, पानी पीते ही घूंट, जब ज़रा सी रग तर हो तो पी पढ़ लीजिए। हमें तो उस वक़्त वो इफ्तारी की प्लेट ख़त्म करने के बाद पढ़नी है तो सांस भी नहीं आएगा। लेकिन वाकई जो पानी का एक घूंट जाए और रगें तर होती महसूस हों, उस वक़्त तो जिस्म के एक एक हिस्से से ये दुआ निकलती है। ठीक है, तो ये दुआ याद कीजिए, और अभी रमज़ान आएगा तो इंशाल्लाह आप ये सारी दुआएं याद करेंगे। और छठी चीज़ क्या है सुन्नत रोज़े की? इफ्तार करवाना। खुद अपना तो रखते ही हैं, दूसरों का भी रखिए। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि आप रोज़ा जब रखते हैं तो कौन से काम जायज़ हैं, रोज़ा क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फिर भी रोज़ा रख लेंगे। नंबर एक, हालत जुनाबत में रोज़ा रखना और गुसल बाद में कर लेना, फजर से पहले पहले, बुखारी 1926 और बुखारी 1931। दूसरी चीज़ क्या है कि रोज़े की हालत में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना भी जायज़ है। हाँ, एहतियात करनी चाहिए कि सांस के साथ पानी अंदर ना चला जाए, अबू दाऊद 2366 और 142। और तीसरा काम जो हम रोज़े से कर सकते हैं वो क्या है, आप मिसवाक कर सकते हैं, बुखारी की रिवायत 1934 है। और क्या और अंदर क्या जा सकता है रोज़े में? बस कहते नहीं, कुछ भी चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है, तो मैंने कहा कि फिर ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है ना अंदर। तो रोज़े में इस तरह के कामों में से ये चीज़ें। फिर नेक्स्ट नोट कीजिए, रोज़े में आप क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जिसका मकसद दवा हो, ताकत ना हो। यानी आप अब रोज़ा रख के वहाँ क्या कहते हैं उसको, ड्रिप लगवा कर बैठ जाएं ग्लूकोज़ की, एनर्जी लेवल सही रहे, ये नहीं है। तो दवा के लिए हो, जो मैदे के रास्ते नहीं खा सकते थे वो ऐसे खा लें। पांचवी चीज़ जो आप रोज़े की हालत में कर सकते हैं वो तेल लगाना और कंघी करना, बुखारी की रिवायत 1913। फिर नेक्स्ट, गर्मी की वजह से गुसल करना, पानी कुछ ना कुछ तो उससे भी हमारे पोर्स के रास्ते, हमारे पोर्स के रास्ते आगे जाता है ना पानी। फिर इसी तरह ये 2365 अबू दाऊद। फिर नाक में दवा भी डाली जा सकती है, बुखारी की रिवायत 1934। फिर हंडिया का जायका चखना, चले आपकी तो मौज हो गई, आपके समझ ही नहीं आ रहा टेस्ट कैसे, ज़रा और चख लूँ, फिर और चख लूँ, नहीं, शर्त कह के हलक में ना जाए, टेस्ट मुंह में रहे, फिर कुली कर लीजिए, थूक दीजिए। फिर नकसीर आना, नाक से खून निकल आता है किसी वजह से, आपका इख्तियार नहीं है तो फिर इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। फिर इसी तरह से ब्लड निकलवाना, को टेस्ट करवाना है, ठीक है, कर लीजिए। पछने लगवाना, कपिंग जोंक लगवाना जिसको आप कहते हैं, बुखारी 1938 और 1939। फिर इसी तरह सुरमा भी लगा सकते हैं आप रोज़े की हालत में, इब्ने माजा 1967-8। कान या आँख में दवाई के कतरे डालना, ये भी जायज़ है। फिर बग़ैर किसी ख्वाहिश के, यानी मीन जज्बात पे काबू हो, तो बीवी से मुआनिका करना या उसका बोसा लेना। शर्त यह है कि उससे जज्बात का गलबा ना हो। अल्लाह के नबी ने एक बूढ़े शख्स को इजाज़त दी लेकिन जवान को मना किया क्योंकि ख़तरे की बात थी, अबू दाऊद की रिवायत है 2387। फिर इसी तरह दांत में दवाई मलना लेकिन हलक तक ना ले जाएं। यहाँ आपको पता है कि क्लीनिंग करवाते हैं ना दांतों की, फ्लोराइड शायद पिलाते हैं, उसका टेस्ट होता है, इट्स ओके, कुली कर दीजिए, आगे ना जाए मुंह में, एक थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है तो आप वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह से दांत के साथ हो गया, मेकअप कर सकते हैं रोज़े में, अंदर नहीं जाती, बेस लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, हाँ, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूटता है? खाते नहीं हैं, और बाकियों का क्या फतवा जी? हाँ, आप ना लगाएं, आपके ना लगाने जी, आप शाइस्ता देखिए, मुझे किसी ने एक मौके पे कहा, ऐसे ही लोग बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता कि रोज़े लिपस्टिक में क्या कुछ होता है, पिक की चर्बी ये वो, तो मैंने कहा फिर तो रोज़े के बगैर भी जायज़ नहीं है, बात समझ गए ना। देखिए, हम अपनी मर्ज़ी से क्यास नहीं कर सकते। हज़रत ईसा रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में मैंने ख़ुद ये कॉल पढ़ा कि जब रोज़ा रखते थे ना तो तेल अपने होंठों पे लगाते थे कि खुश्की या पिपड़ियों की वजह से लोगों को मेरे ऊपर रहम ना आए। बल्कि मैंने उसमें जो चीज़ पढ़ी कि रोज़ा रख कर अपने आप को फ्रेश रिलैक्स दिखाना कि लोगों को आप पे रहम ना है, ये ज़्यादा पसंदीदा बजाय इसके कि आप वो मोए मारे बैठे हैं रोज़ा रोज़ा रोज़ा। और किसी ने कहा नहीं, असल में फिर उसके लिए शीशा भी तो देखना पड़ता है ना, यानी उनके गुमान के मुताबिक शीशा देखने से भी रोज़ा टूट जाता है। ये आपकी मेरी बात है, ऐसी कोई नहीं। साबुन लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, फिर इसी तरह ठंडे पानी में नहाना, स्विमिंग पूल में बैठ जाइए रोज़ा रखकर, पानी में घूमते रहें, गोता लगाना, इससे भी नहीं टूटता। बच्चा खाना खा रहा है, माँ उसको चबा कर नरम करके देना चाहती है, कर सकती है। खुशबू भी लगा सकते हैं। और ये सारे फतावा जो है ना, इसमें मोस्टली इमाम इब्ने तैमिया के और कुछ और फतावा बुक्स भी हैं, आप चाहें तो मैं उनके नाम बाद में आपको दे सकती हूँ। फिर इसी तरह से थूक निकलना, जैसे आप अपना ही सलाइवा जो है वो निकल जाते हैं, ये भी अलाउड है, बुखारी 1930। फिर बिला इख्तियार मक्खी चली गई मुँह में तो रोज़ा नहीं टूटेगा आपका। फिर दांतों से खून निकल आया, इससे भी नहीं टूटता। और इसी तरह बच्चे को दूध पिलाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक चीज़ रह गई है, वो क्या? रोज़ा किससे नहीं टूटता जी? कह, वॉमिट का सुन लीजिए, जान के करें, इरादतन करें तो नहीं करना चाहिए, खुद से आ जाए तो नहीं टूटता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मकरूह हैं, जिसको आप कह लें कि डाउटफुल सी हैं, नोट कर लीजिए। कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना कि चलो इसी बहाने फिर कुछ पानी भी अंदर चला जाए, फिर जानबूझ के बोसा देना और शहवत का गालिब आ जाना, फिर इसी तरह से पचने लगवाना इस तरह से कि जिससे वाकई बॉडी में निकाहत आ जाती है। समटाइम कभी आपने हिजामा कराया तो उसके बाद जिस्म में कमज़ोरी लगती है ना, तो नहीं कराना चाहिए ताकि जिस्म के ऊपर बोझ ना पड़े। शहवत के साथ जानबूझकर बीवी की तरफ देखना और कोई ऐसा और भी अमल करना, फिर कोई चीज़ मुंह में डालकर जानबूझकर चबाना और इसी तरह से कुछ और काम, इनसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए इस्लाम का एक असूल याद है आपको, सूरत बनी इसराइल में आपने पढ़ा था, वला तकरबुज़ ज़िना। और तलाक के मौजू में सूरह बकरा में क्या कहा? तिल का हुदूदुल्लाही फला तक्रबूहा। हदों के करीब नहीं जाना चाहिए। आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या बिल्कुल उस डिवाइडिंग लाइन के ऊपर खड़ी करते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मिडल में ना? तो बाज़ लोग दीन में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, इससे रुक जाना चाहिए। फिर इसी तरह से किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, ये भी नोट कर लें। चलिए आपके लिए दोहराई सही, ताकि एक तरह का आपके साथ पास एक हैंड आउट तैयार हो जाएगा पूरी बुक का। पहली चीज़, जानबूझकर खाना खाने से पीने से, भूल कर खाने वाले के लिए रोज़ा पूरा करने का हुक्म है। बुखारी की रिवायत है 1933 और मुस्लिम 2716। फिर दूसरी, जानबूझकर क्या करने से टूट जाता है, बुखार अबू दाऊद 2380। जानबूझकर मुबाशरत करने से, बल्कि इसका तो बहुत ज़बरदस्त कफ़ारा है, यानी फ़र्ज़ रोज़ा अगर इस वजह से टूट जाता है तो उस पर मुस्तकिल 60 रोज़े रखने पड़ते हैं, एक छोड़ा तो पीछे से फिर शुरू करेंगे। बुखारी 1936, मुस्लिम 2589। फिर इसी तरह हैज़ या निफास के आते ही, बुखारी की रिवायत है 1951। इसमें भी हमारी इंडिया पाकिस्तान की ज़रा सी शरीयत फ़र्क है, 12 बजे के बाद पीरियड आ जाए तो रोज़ा पूरा करो। सुना वह? और इसी तरह से नया रोज़ा शुरू करना है तो उसके लिए फलां 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 काम जब तक ना कर लो रोज़े नहीं रख शुरू करने, ये बेकार बात है। मगरिब की नमाज के वजू के वक्त भी अगर आपने चेक किया और ये कैफियत तारी हो गई, रोज़ा टूट जाएगा, अजर मिलेगा, उस रोज़े की कज़ा है। लोग कहते मेरा तो दिल ही नहीं मानता, मैं नहीं तोड़ रही, तो ना तोड़िए, हुआ कोई नहीं, आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी तरह ग्लूकोज या खून या कोई गजाई मवाद को अंदर दाखिल करने से, ये रोज़ा इफ्तार करने की तरह से है, यानी जानबूझ के कोई ऐसी एनर्जी वाली चीज़ ले लेना। फिर इसी तरह मनी खारिज हो या मनी का अंजाल हो, यानी वही बात जिसकी वजह से ताल्लुक मना था वो काम खुद ब खुद हो जाए, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। फिर इस तरह इख्तियारी फेल से रोज़ा टूट जाएगा, यानी इख्तियारी फेल से रोज़ा क्या है? मसलन जान के ये काम हुआ, लेकिन ख्वाब में अगर इहतलाम हो जाता है तो फिर ये गैर इख्तियारी है, इस पर नहीं टूटता। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या कुछ रुख्सतें भी दी हैं रोज़ों के मामले में? किसको रुख्सत है? हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रम रोज़ा? नंबर 1, मजनू, बेचारे को पता ही नहीं, होश ही नहीं, उस पर फ़र्ज नहीं। फिर फिर नाबालिग बच्चा, उस पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, आदत रखने के लिए डालने के लिए ऐसा ऐसा रखवाए जा सकते हैं। फिर इसी तरह मरीज़ के रोज़ा रखने से मर्ज़ में अगर इजाफ़ा हो तो रोज़ा नहीं रखना, बकरा 185, और लेकिन बाद में कज़ा लाजिम है, बुखारी 1943 है। फिर इसी तरह से आप देखिए सफ़र पे, आप इसमें भी समझ लीजिएगा, सफ़र के दौरान रोज़ा नबी सल्लम ने रखा भी और नहीं भी रखा। मसलन दो तीन जगह पे आप देख लीजिए रोज़े की कुछ डिफरेंट कैफियत है। मुसाफिर, पहली बात है मुसाफिर छोड़ सकता है, वो जहाज़ पे जाए, पैदल जाए, टांगे पे जाए, घोड़े पे जाए। बुखारी की रिवायत 1943 पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन कज़ा लाजिम है। अब सवाल पैदा होता है कि एक शख्स हमेशा ही सफ़र में है, मुलाजमत के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर, जैसे ड्राइवर वगैरह हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? रोज़ा छोड़ सकते हैं लेकिन बाद में कज़ा रखेंगे, बुखारी 1942। फिर इसी तरह से रोज़ा कौन नहीं रखेगा? हामिल औरत, प्रेग्नेंट वुमेन, और नर्सिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली औरतें। तकलीफ़ महसूस करें, बच्चे को नुकसान है, छोड़ दें, लेकिन मसला यह कि बाद में कज़ा रखनी पड़ेगी, अबू दाऊद 2408। और समटाइम क्या होता है कि बाद में रखना बहुत मुश्किल होता है। एक साल अगर प्रेगनेंसी की वजह से छूट गए तो अगले दो साल आपके छुटेंगे दूध पिलाने के लिए, तो तीन साल के जब तकरीबन 90 रोज़े आपके ऊपर हों और अगले साल के भी 30 आ जाएं, तो 120 रोज़े रखने मुश्किल होते हैं। कोशिश करके रख लेना चाहिए। और इसी तरह से हैज़ और निफास वाली औरतें इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेंगी लेकिन कज़ा ज़रूरी होगी, बुखारी 1951। आज इंसान ने तरक्की की है ना, पिछले इस साल के रमज़ान में मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में सुना कि मुसलमानों में अब एक ग्रोह ऐसा पैदा हो गया, वो कहता है कोई हरज की बात नहीं, पीरियड्स में भी रोज़े रखो, क्योंकि अब वो गंदगी नहीं रही। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह बस देख लीजिए, जो करने की नई बातें वो करवा रहे हैं और जो नई जो करने की थी वो छोड़ रहे हैं। फिर इसी तरह वो शख्स जो रोज़ा रख ही नहीं सकता, दायमी मरीज़ है, मसलन शुगर है, किडनीज़ का प्रॉब्लम है, पानी पीना पड़ता है, हर दो चार घंटे बाद कोई दवा लेनी पड़ती है, या फिर बूढ़ा जिसके अब जवान होने की कोई सूरत नहीं है, तो वो लोग फिर हर रोज़ एक मिस्कीन को खाना खिलाने के मुताबिक फ़दिया दे दें। ऐसे बंदे पर फ़दिया है, कज़ा नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने ख़ुद किसी को देखी, आजमाई उसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट पेशेंट थी जवानी से ही, दिल में कुछ स्ट्रिंग्स पड़े हुए थे, क्या था स्टक, क्या बोलते हैं, क्या एक बोले स्टंट, ओके तो वो कभी नहीं रखा था उन्होंने, बहुत अच्छी खातून थी माशाल्लाह, तो उनको सभी डराते थे नहीं रखना, तो जब हमारे पास आई और शुरू हुआ उनके साथ मामला, मेरे साथ भी उन्होंने डिस्कस किया, मैंने कहा ऐसी बात है कि रोज़ा रखना निभाना मुश्किल है ना, रख तो आप सकती हैं, आप ऐसा किया करें जब सब सुबह उठते हैं सहरी में आप भी खा लिया करें, दिन में जिस वक्त महसूस हो, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, वैसे भी तो देखिए हम एक दफ़ा खाना खा के 4 5 6 बल्कि 7 घंटे तक कुछ नहीं खाते ना, तो नहीं खाया, तो जब आपको खाने को होगा तो खोल लीजिएगा। कहने लगी ठीक है। हैरत की बात है, हैरत की बात है, उस महीने उन्होंने पूरे रोज़े रखे, एक भी दिन उनको नकाहत नहीं हुई, और वो इस पे इतना रोती थी कि मैंने सारी ज़िंदगी ये तजुर्बा क्यों नहीं किया। यही मैं मशवरा हमेशा भी देती हूँ शुगर पेशेंट्स को, यही देती हूँ हार्ट पेशेंट्स वालों को, रख लीजिए, रखना तो मना नहीं। नाश्ते का वक्त सबके साथ, एक तो देखिए स्पिरिचुअली अच्छा लगता है, वरना लो जी सब रोज़ा रख रहे हैं मैं सो रही हूँ, सोना क्यों, आपने फजर के लिए तो उठना ही था, रखिए। इसी तरह मैं उनको भी कहूँगी जिनको नहीं रखने पीरियड्स में, सिस्टर्स अब ज़रूरी है घर में सबको बताओ कि इसको नहीं रखना उसको नहीं रखना, या प्रेग्नेंट है उठिए सहरी का इहतमाम कीजिए, उसमें बरकत है, बाद में आप जब मर्जी खा लीजिए। तो जैसे बच्चों वाला रोज़ा होता है ना कि दो रोज़े रखेंगे और चिड़ी रोज़ा और कहाँ रखा है, बेटा रोज़ा किधर रखा है, मुँह में रखा है, हैं, तो ये चीज़ें बच्चों वाले रोज़े फिर आप रख सकते हैं, कोशिश करें, अल्लाह ताला मदद कर देता है। अब सवाल पैदा होता है कि रोज़े छूट गए हैं उसका क्या करें, कज़ा रोज़ों के अहकाम थोड़े से दोहरा लेते हैं। पहली बात है कज़ा ज़रूरी है, फ़ायदा तो मैंने याम नोखर बकरा 189 में हम पढ़ते हैं। फिर जो शख्स ज़िंदगी में कुव्वत से महरूम हो जाए, यानी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई कुव्वत, वो क्या करे? नंबर एक, उसके रोज़ों की कज़ा ज़रूरी नहीं, बस एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा यानी कफ़ारा देगा। दूसरी बात वो है कि जो शख्स कुव्वत से महरूम था और फौत भी हो गया, अब उसके वली रोज़ा रखेंगे और इसके रोज़ों के बदले उतने ही मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा। और शायद ये बात आपको याद है, हमने किताबु सलात में पढ़ी, किताबु सौम में पढ़ी थी, एक साल जब गुजर जाता है ना रोज़े पे, और आप उसको कज़ा नहीं कर पाते, तो फिर अगले साल में फिर कज़ा भी है और फिदिया भी है, यानी वो एक किस्म का ऊपर जुर्माना लग जाता है एक्स्ट्रा। फिर इसी तरह कोई शख्स ज़िंदगी में नज़र माने और रोज़ा ना रखे, नहीं रख सका, तो उसके वरसा को फिर वो रोज़ा रखना होता है। बुखारी की बहुत खूबसूरत रिवायत है 1952। फिर इसी तरह से बीमारी, सफ़र, हैज और निफास, इसकी वजह से जो रोज़े रह जाते हैं क्या करें? नंबर एक, रमज़ान के फौरन बाद बिला ताखीर रोज़े रख लीजिए। मुस्लिम 335, बुखारी 321। इसमें सहूलत क्या है? नंबर एक, तवातुर शर्त नहीं है। तवातुर समझते हैं ना, तरतीब, कंटिन्यूटी शर्त नहीं है। वक्फे वक्फे से रख सकते हैं, ये भी बुखारी 1950 से आपको दलील मिलेगी। और रमज़ान की कज़ा ताखीर से भी दुरुस्त है, बुखारी 1950। यानी हज़रत आयशा की रिवायत को बहुत लोग दलील में लाते हैं कि वो कहती हैं हम एक साल के छुट्टे पे रोज़े अगले रमज़ान से पहले पूरे करते थे। तो चॉइस मौजूद है, सर्दियों में रख लीजिए जो भी है। चलिए, ये तो थे फ़र्ज़ रोज़े अल्लाह ने हमें दिए, दुआ कीजिए हो। आज भी जाके गिनिएगा, देखिए आज हमारी उम्मत को क्या हो गया कि रोज़े जिसकी कज़ा फ़र्ज़ थी वो नहीं लोग करते, और नमाज जिस जो पिछली नमाजें जिसमें कुछ भी नहीं याद, कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, जिसके अंदर कोई पता ही नहीं कितनी गिनेंगे आप, उसकी कज़ा उम्री है। रोज़ों की मैंने कज़ा उम्री किसी से नहीं सुनी, रोज़ों की कज़ा उम्री होती है। ये जुमला लिख लीजिए कि कज़ा उम्री रोज़े की है, नमाज की नहीं। वजह क्या है? रोज़े काउंटेबल हैं, आपको सब पता है, गिन लीजिए। अगर कभी भी नहीं थे छुट्टे में रखे, एक एवरेज लगा लीजिए, हर साल के 6 रोज़े रखने पड़ेंगे। सर्दियों में रख लीजिए, और जिनको रोज़े रखने हैं छुट्टे हुए, वो बड़ी खुशी से 2-3 महीने नॉर्वे में आके हमारे स्कूल में रह लें और रोज़े रखें। 4 घंटे का रोज़ा, 5 घंटे का रोज़ा, सुबह 9:30 बजे शुरू होगा आपका, सूरज खुले निकलेगा, और 2:30 बजे, तो इतना वक्त तो मेरा हाल है वैसे ही ब्रेक के वक्त के आ जाता है। नमाज पढ़ के फजर के लिए बाद फजर की नमाज स्कूल में पढ़ते हैं सर्दियों में स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ होता घर से, जब निकलते हैं घंटा दूर से अगर आ रहे हैं तो। सर्दियों में रख लीजिए तो इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लिखिए ज़रा, बड़ी खूबसूरत लिस्ट है आपके पास तकरीबन 11, क्या कि वो रोज़े जो मुस्तहब है, फ़र्ज तो हो गई बात, रिकमेंडेड। नंबर एक, शवाल के 6 रोज़े, मुस्लिम 2758। फिर ज़िलहज के पहले 9 दिनों के रोज़े, अबू दाऊद 2437। फिर पीर और जुमेरात का रोज़ा, सही मुस्लिम 2750। फिर सिर्फ 9 ज़िलहज का रोज़ा भी, सही तरगीब 999। फिर मुहर्रम के 2 रोज़े, जिसके अंदर आप साथ ही मिला लें अगला भी, तो आशूरा यानी खाली 10 का भी रखना चाहें तो भी, ये रिवायत मुस्लिम की 2755 और 2747। फिर इसी तरह शाबान का महीना, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े जिस महीने में रखते थे वो शाबान का महीना है, बुखारी 1962 और मुस्लिम 1156। फिर इसी तरह से यामे 20 के रोज़े, 13, 14 और 15, फुल मून कहते हैं ना इनको, 20 क्या है? बैजा, चमकता हुआ, रातें भी रोशन होती हैं, अबू दाऊद 2449। फिर इसी तरह आपको होता है कि जिहाद के दौरान भी रोज़े का बड़ा अजर है, बुखारी की रिवायत जाके पढ़िएगा 2840, तो आपको इसकी असल समझ आएगी कि सहाबा एक नेकी पर राजी नहीं होते थे, वो दूसरी भी नेकी कर लेते थे। फिर इसी तरह एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन छोड़ना, इसको सौम में दाऊदी कहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के पसंद हैं, एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ते, बुखारी 1979 और मुस्लिम 1159। क्या कभी रोज़ा रखना मकरूह भी है, पसंदीदा नहीं? नंबर एक, मैदान अरफात में हाजियों के लिए रोज़ा रखना नहीं है, अबू दाऊद 2440। फिर दूसरा, सिर्फ जुमे का रोज़ा रखना, क्या सोच के कि आज बड़ा अच्छा दिन है, होली डे है, ओनली जुमे का नहीं रखना चाहिए। फिर इसी तरह शाबान का आखिरी दिन, यानी जो शाबान के बल्कि लास्ट डेज रह जाते हैं ना के नेस्फ के बाद, उसमें नहीं रखने चाहिए, पसंदीदा नहीं है, ताकि थोड़ी सी ताकत एनर्जी बहाल रहे, ताकि आप फ़र्ज़ रोज़े रखें, अबू दाऊद 2337 है। लेकिन कोई रख ले तो गुनाह नहीं है। और इसी तरह सिर्फ हफ्ते का दिन का रोज़ा, यौम सब्त की तशबीह में कह लीजिए, ये भी पसंदीदा नहीं है, तिर्मिज़ी की रिवायत है। लेकिन अगर कोई रखता है अल्टरनेट डे पे, अब इनमें से जितने भी मैंने बताए हैं मोस्टली अगर कोई रखता है उसकी आदत है तो इट्स ओके, जुम्मा आ गया इट्स ओके, सिर्फ हफ्ते को आ गया इट्स ओके। यानी इसमें फिर वही बात कहूँगी कि अल्लाह के लिए इबादत के मामले में कुन चुरियाँ ना बने। आज हमारी उम्मत में दो तरह के इख्तलाफ आते हैं, और नोट कर लें आप इस बात को, जिसको फिकही इख्तलाफ हमारे कल्चर में कहते हैं ना, ये सिर्फ इबादत का इख्तलाफ है। उसमें भी कोई ये नहीं कहता, कभी किसी इमाम से आपने ये सुना कि नमाज़ें पाँच नहीं छः हैं? कभी किसी स्कूल ऑफ थॉट से आपने ये सुना कि फजर की चार फ़र्ज हैं और दूसरा के दो हैं? कभी सुना? फ़र्ज़ों में कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि मैंने जितना इसको सोचा, और एक मैंने कल रात को भी नियत की कि एक लेक्चर इंशाल्लाह अगले दिनों में देना, वहदत उम्मत, आज उम्मत को जोड़ने की बातें करें, तोड़कर आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अपने आप को भी कच्चा कर रहे हैं दूसरों को। इस वक्त जितने उम्मत मुस्लिमा के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, इतनी खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं, मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत मस्जिदों की मौजूदगी में हमें मदरसों की तो ज़रूरत ही नहीं बनाने की। अब हर वक्त हम इस जगह के लिए सोचते रहते हैं, ये छोटी और प्रोजेक्ट ये करने हैं, चले अल्लाह जगह दे दे अल्लाह, लेकिन वल्ला ही अगर मस्जिदों को मदरसे बना दीजिए, वो सारी एफर्ट्स हैं वो सारी इस पर लग जाएँ। क्यों कि ये मस्जिदें आज वीरान क्यों हैं? ये इबादत भी पूरी नहीं। लुक फर्स्ट थिंग, अकीदे में कोई जो अकीदे का इख्तलाफ है वो तो इस्लाम ही नहीं है, उसको तो आप बिल्कुल अलग करें। दो तरह के इस वक्त स्कूल ऑफ थाट्स हैं जिनके अकीदे में झोल है, नाम नहीं लेना चाहती, ले सकती हूँ पर ज़रूरत कोई नहीं है आपके सामने लूंगी क्या फ़ायदा, उसको तो आप इस्लाम से ही बाहर समझें कि हो इस्लाम के बेसिक से मुख्तलिफ। नबी को गाली, नबी के सहाबा को गाली, अल्लाह के नबी के वजूद को ही कभी कोई कुछ और कह दे, यानी आप समझ गए ना कि जो अल्लाह और रसूल के मामले में ही कह लीजिए कि मिसअंडरस्टूड है, उसको तो वी कैंट सफ़र, उसको तो सलाम खुदा हाफिज, आपका और रास्ता आपका हमारा, इट्स ओके, नहीं कर सकते हम इस बात पे कॉम्प्रोमाइज, उसको तो कट डाउन कीजिए, वो तो सारी अलग कर दें, वो जो चाहें अपना नाम रखें। बट रह गई बात, मिसाल है चार स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ना आज, हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली, सब पे कही रहमहुल्लाह अलैह। याद रखिए इन चार स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ ये जो इस वक्त ट्रंक का हिस्सा पढ़, मैं जो बोलती हूँ ना मेरे से मैं दरख्त बनता है अभी भी, ट्रंक का एक हिस्सा फाइव पिलर ऑफ इस्लाम, उसमें से भी फ़राइज नहीं, अब ये जो मैं अलग अलग लिखाती हूँ सब फ़राइज़ पे मुत्तफिक है, सिर्फ छोटी सी बात है सुन्नतों की, रफ़ुल यदैन करो कि ना करो, एक कहता फ़र्ज है, एक कहता कोई बात नहीं, एक कहता करो ही कुछ ना, ये क्या बड़ी बात है, व्हाट डज इट मीन, बात समझ गए। इसी तरह से आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी इबादत में से भी सिर्फ सुन्नतों और नफलों की वजह से उम्मत को तोड़ा हुआ है आज लोगों ने, और लोग अकीदे और फ़िक़्ह का फ़र्क ही नहीं समझते, पता भी नहीं है कि क्या फ़र्क है। तो हमेशा याद रखिए, दिल खुला रखें, अगले को उसकी मर्ज़ी दें, इख्तलाफ गवारा कर लीजिए, मुखालफत में ना पढ़ें। यानी एक जुमला मैंने शायद अपने पढ़ने के दौर से अपनी गुट्ठी से बांधा हुआ है कि इख्तलाफ को मुखालफत में ना बदलें। प्रॉब्लम कहाँ आज उम्मत मुस्लिमा में आ गई कि इख्तलाफ मुखालफत में बदल गया। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, मौजू से तो ज़रा सा हट रहे हैं लेकिन बात शुरू हुई है तो आपका हक है। देखिए आप में से कितने लोग अभी मरियाटा साइड से आए, हाथ खड़ा करिए। हाईवे पे से कितने लोग आए, इवन बाकी भी रोड, रोड्स कैसे चलती हैं, कुछ गाड़ियाँ साउथ टू ईस्ट और दूसरी अपोजिट, ये क्या है इख्तलाफ। आपकी डेस्टिनेशन रॉजविल थी, आपने स्कूल में आना था, कई जगह आपने बीच में इशारे दे देकर एग्जिट ले लिए ना, कुछ सीधे निकल गए। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप में से कुछ लेफ्ट जाएंगे, कुछ राइट जाएंगे, कुछ उधर अगली सिग्नल पे इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, ऐसे ही है ना। ये है इख्तलाफ, क्योंकि आप सबके घर मुख्तलिफ तरफ है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मुखालफत क्या है, इधर से आने वाली गाड़ी इससे टकरा जाए, तुम क्यों आए, मुझे आना था, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो तुम भी इधर जाओ। क्या ये पॉसिबल है कि आप घर से इस शर्त पे निकले कि जिधर मैं जाऊँगी सारी गाड़ियाँ उधर जाएं, एक वाच, तो फिर सारे आपके घर जाएंगे या सारे आपके ऑफिस में आएंगे या सारे आपके स्कूल में आएंगे, इज़ इट पॉसिबल? एक शर्त ये लिखिए तो आपको समझ आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी आप कहते हैं मैं उस दिन गाड़ी रोड पर लेके जाऊँगी जिस दिन रोड पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ मैं, आई एम, मैं, माई सेल्फ, आवर। अब मुझे बताइए वो हड़ताल का दिन होगा, कर्फ्यू का दिन होगा, कोई संडे की ऐसी टाइम होगी जिस वक्त मैच लगा होगा और सारी दुनिया अंदर होगी, और आपने अकेले जाके करना क्या, स्टोर भी बंद, सब कुछ बंद। जिंदगी का असूल याद रखे, चलते जाओ लेकिन डोंट कोलाइड ईच अदर। यही शौहर बीवी हैं, यही सास बहू हैं, यही बच्चे माँ बाप हैं। डू योर जॉब एंड दूसरे को ना छेड़ो, ना छेड़ो ना छोड़ो, आपको जब चाहिए कर लीजिए। तो इन बातों पे लड़के इस वक्त उम्मत के इतने रिसोर्सेस को जाया करना, ये याद रखिए उम्मत का सर ज़िबा करना है। आज वो लोग उम्मत को ज़िबा कर रहे हैं कि जो सिर्फ छोटी छोटी फिकही बातों की वजह से अलग नाम लेके बैठे हैं। मस्जिद है ना, जाइए नमाज पढ़ लें। हाँ, अकीदे में खराबी हैं, नीचे जड़ें खराब हैं, वो तो अल्लाह के नबी को ही कुछ और कहने लग गए और अल्लाह को कुछ कहने के, तो फिर आप कल चर्च में भी पढ़ लें, वो भी तो ईसा को अल्लाह का बेटा ही कहते हैं ना, वो कौन सा कुछ और कहते हैं। अकीदे वाली बात नहीं, जहाँ फिक है, जो इस मस्जिद के आगे रुके बिस्मिल्लाह कीजिए, नमाज पढ़िए। अब वो कौन है, उनके क्या मोटिव्स हैं, आप अपने तरीके से पढ़ें। और अगर आप किसी एक सुन्नत पे अमल करने की वजह से नमाज के दौरान सलाम फेर कर उस बंदे को मारने कूटने लग जाए, निकल जाओ गुस्ताख, हमारी मस्जिद में आके तुम रफुल जदैन कर रहे हो और तुम आमीन कह रहे हो और इसके जाने के बाद मस्जिद को धो दो, तो इतना बुग़्ज़ तो हमारे दिल में कुफार के लिए भी नहीं है। सारा दिन उनके हाथों के चॉकलेट, कैंडी, ब्रेड, ब्रेड बटर खाते रहते हैं, वो फिर भी अच्छे हैं। और जहाँ मुसलमान है कहते हैं ना जी ना, हम सिर्फ अपने फिरके वालों से, यानी किसी ने कहा कि हम तो दूध भी अपने फिरके वालों की भैंसा लेते हैं, तो मैंने कहा याद रखे भैंस फिर भी मुसलमान है, वो आपके फिरके की नहीं है। कुल्लू लहू कान दून, तो समझ शायद आ गई हो। मैं चाहती हूँ जो कम अज़ कम आप मेरे साथ बैठ के उठे ना, आप इस मुआशरे में कुनछुरियाँ ना बने, प्यार की बात करें। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई मेरा नहीं ख्याल के सख्त बात करेगा, जहाँ हराम हलाल की बात होगी मैं खामोश भी नहीं रहती उस पर। मैंने ये भी नहीं कहती इट्स ओके, लोग नाराज़ होंगे, सूद की बात ना करो, अकीदे की ना करो, बेदत की ना करो, सच भी देना है, लेकिन जहाँ ये छोटी छोटी बातें हैं इसको छोड़ दें। आपका मेरा काम है क्या आप आलिम है, और आप में से तो अभी किसी एक को इजाज़त नहीं है ऐसे फिकी मसलों को छेड़ने की। आप में से कोई मुफ्ती नहीं हुआ, आप में से कोई शेखा नहीं बन गई, आप में से कोई मुफ्तिया नहीं बन गई, अब तो मैं हम सब सिर्फ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने मैंने अपने मरते दम तक जो डिग्री लेके जाना है ना, वो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज की है। हम में से कोई स्कॉलर ऑफ नॉलेज नहीं है। अभी तक मैं ना बनी तो आप कैसे बन गए? किसको शौक है तो फिर आप वो शौक कहीं और भी पूरा कर लीजिए। यहाँ से आपको कभी आलिमा की डिग्री नहीं मिलेगी, आमिला की लेने की कोशिश कर लें। रदी अल्लाह अन्हु व रदुवन ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा, खशियत लाइए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सारी फिक फिक, ये सारा कुछ इबादत कैसे, क्यों? क्योंकि ये दीन है, ये लाजिम है, लेकिन सिर्फ ये दीन नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि किन दिनों में फिर रोज़े रखना हराम भी होता है। नंबर एक ईद उल फितर और ईद उल अधा का दिन, बुखारी 1991 और 1993 और मुस्लिम 1138, जो एक लिख सकें वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात अय्याम तशरीक के रोज़े, ईद के बाद के अगले 3 दिन। कौन सी ईद? ईद उल अधा। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ईद के 3 दिन है। पहला दिन यानी 10 ज़िलहज, फिर 11 और 12। अच्छा, बड़े प्यार से क्या कहते हैं, ईद, फिर टरू, फिर मरू, तो फिर अगला क्या होता है, वो भी होती। ये कहना चाह रही थी कि ईद सिर्फ टरू मरू पे नहीं ख़त्म होती, उससे अगला भी दिन ईद होता है। ठीक है, कुर्बानी कर सकते हैं आप, मेरा ईद के बाद 3 दिन, टोटल 4 दिन तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। तो वो खाने पीने के दिन है, उसमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसकी दलील सही मुस्लिम 1141। फिर इस तरह बग़ैर आदत के नसफ़ शाबान के रोज़े, यानी जान के आप शाबान के बाद एंड मिड के बाद शुरू कर दें, वैसे नहीं रखते थे, अब जान के रखने शुरू कर दें, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। फिर इसी तरह शाबान की आखिरी तारीखें, जैसे 29-30 के करीब पहुँचे तो इस्तकबाले रमज़ान के नाम पे रोज़े रखने। आप कहेंगे ये भी कोई रखता है? जी, ये पिछले 3-4 साल से ये बिदत सामने आई है, ऐसे इस्लामी रोज़ा कहते हैं इसको, हम रमज़ान को सलामी दे रहे हैं, तो दूल्हा को ही दे लीजिए, काफ़ी है। वो सर पे एक घूंघट बांध के और वो क्या कहते हैं उसको, सेहरा बांधे बैठा है, हाथ में रुमाल लेके, उसको सलामी दे दीजिए। रोज़े को आपकी मेरी सलामी की ज़रूरत नहीं है, मना है, शक की डेट पे तो रोज़ा भी मना है। बहरहाल बुखारी 1914। फिर इसी तरह हमेशा रोज़ा रखना, ऑलवेज। जी मैं तो हमेशा रोज़े से होती हूँ, इब्ने माजा 1705। या मुझे एक अम्मा की बात याद आ गई, अपने बेटे के रिश्ते के चक्रों में थी, उसकी खूबियाँ हमें बयान कर रही थी आके, कह कि लड़की चाहिए आपके स्कूल से, ये वो करी, मेरा बेटा इतना अच्छा हर रोज़ जुम्मा पढ़ता है। तो मैंने कहा हमें तो ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो हर रोज़ जुम्मा पढ़ता हो। तो ये बाज़फ़ा बंदे के मुँह से निकल जाता है, हमेशा रोज़ा नहीं रख सकते आप और मैं। फिर इसी तरह जुमे का अलग रोज़ा रखना, बुखारी 1975 और मुस्लिम 1401, ठीक है। फिर आगे भी पहले भी बताया लेकिन उसी में कि सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा भी रखना। फिर इसी तरह कोई भी शक के दिन का रोज़ा रखना, मशकूक, बादल निकले चाँद नहीं दिखा तो आप कहते हैं हो सकता है हो, फिर चाँद बादलों में चला गया। हर साल अमेरिका में जब तक मैं रही हूँ इख्तलाफ ही देखे थे, मस्जिदों पे झगड़े, ISIS कुछ और अनाउंस कर रही है, इसना कुछ और कर रही है, इकना कोई और कर रही है, नेट कुछ और कर रहा है। भाई अल्लाह के बंदो छोड़ो, अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा हुआ? बादल थे, रोज़ा नहीं हुआ। अब लोगों ने कहा ठीक है नहीं रखा, अगले दिन जब सही चाँद दिखा तो बहुत बड़ा था तो लोगों को शक हो गया, जिसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक रोज़ा खा गए। अब देखिए हमें खाने पीने का इतना शौक है हम रोज़े भी खा जाते हैं। अच्छा जी वो रोज़ा खा गए, अब कितने लड़ाइयाँ झगड़े शुरू। अल्लाह के नबी को लोगों ने कहा अल्लाह के नबी देखो इतना बड़ा चांद है, आपने कहा अल्लाह ने इसको तुम्हें दिखाने के लिए बड़ा कर दिया। मतलब मिट्टी पाओ, दीन का असूल याद रखे, जहाँ उम्मत टूटे वहाँ मिट्टी पाओ। एक से ज़्यादा ऐसी मिसालें और भी जहन में है जिसका इस वक्त ताल्लुक नहीं है, वरना यकीन करें कि उम्मत को तोड़ना और कम्युनिटी को तोड़कर 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर कोई काम कर लेना, ये इतना बड़ा शर है कि अल्लाह की बना। आप कहते हैं ईद पर की नमाज सारे शहर वाले कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं हुआ। आपकी सोच ठीक है, गलत फ़ैसला किया आपके शहर के दीनदारों ने, फिर भी आप जाकर उनके साथ नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आप नून में नुक्ता नहीं बन सकते। हमारा दीन इज्तमाईयत का दीन है, अकेला बंदा कुछ नहीं होता, वन मैन शो इज नथिंग। आप एक अकेले कितने नेक, आपने 30 रोज़े रखे, दूसरों ने 29 रखे, आप उनसे ज़्यादा नेक हैं, बट कम्युनिटी को नहीं ब्रेक कर सकते। ये आपका हाँ फैसला आपने करना है। आप किसी ऐसे मिसाल है कि जैसे यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसे इस्लामिक गिरोह को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे पूछ के सारे अमेरिका कनाडा के लोग चलते हैं, आप उसमें फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। जब वो ज़िम्मेदारी नहीं तो कोशिश कीजिए उन लोगों को एजुकेट करने की, लेकिन राइट अवे अब उन्होंने डिसाइड कर दिया है और आप कहते नहीं। कितने इख्तलाफ होते हैं हर ईद पर, शौहर का रोज़ा है तो बीवी ईद पढ़ रही है, वो ईद ही नहीं रही। तो याद रखिए ये दीन का मिजाज, इज्तमाईयत का मिजाज है। जी आप छोड़ दीजिए। देखिए ताक रातें आपके इस मुल्क की जो ताक रातें हैं ना अमेरिका की, अगर आप सेम रातों को देखें तो इधर की ताक सऊदी अरब की जुफ्त है। 24 घंटे नहीं तो तकरीबन 12 घंटे का तो फ़र्क है ना। और आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में, मोर देन 24 आवर का फ़र्क है। अल्लाह पे डाल दीजिए इस चीज़ों को, 24 कह दिए, यानी आप अगर यहाँ से टाइम डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया का ढूंढें तो इस अराउंड 16 आवर्स है। तो ये अल्लाह के ऊपर मामले डाल दें, आप अपने बिलीफ के मुताबिक काम करें, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, फिर आगे देखिए कि रोज़े में विसाल करना, अब ये क्या होता है अभी बताती हूँ। बुखारी नोट कर ले 1966, सौ में विसाल कहते हैं, ये नबी सल्लम रखते थे। रोज़ा खोलते हैं ना हम लोग तो बीच में खा लेते हैं ना, फिर रात को खाते ही रहते हैं, फिर खाते ही रहते हैं, फिर खाते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं फजर तक। फिर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि फजर से मगरिब तक कुछ नहीं खाना और मगरिब से फजर तक फिर कुछ नहीं रुकना, फिर खाते ही रहना, कई लोग ऐसे हैं ना। तो सौमे विसाल क्या होता है, अभी रोज़ा ख़त्म तो अगला शुरू, कंटिन्यूस रोज़ा। अल्लाह के नबी के पास कभी खाना नहीं होता था तो आप कहते थे मैं रोज़े से हूँ, अब अगले रोज़े की नियत कर लेते थे, लेकिन आज हम मुसलमानों को ऐसी इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद शोहर की इजाज़त के बगैर, अब यहाँ ज़रा शोहरों की खुशी का मसला, शोहर की इजाज़त के बग़ैर बीवी का नफली रोज़े रखना, ठीक है। बुखारी 5195, और इसमें एक छोटी सी बात लगा लें कि शोहर वहाँ मौजूद भी हो। अब शोहर गए दुबई माल कमाने और आप फ़ोन कर रही हैं मैं नफली रोज़ा रख लूँ जी, वो कहेंगे तुम सारे ही रखो मुझे क्या, बात समझ गए। तो फ़र्ज़ रोज़ा तो कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं, नफली रोज़ा है तो। अच्छा आप सवाल ये भी कर ले, विमेन राइट्स के नाम पे फिर शोहर भी बीवी की मर्ज़ी से रखे, आप तुड़वा दीजिए उनका, गुनाह नहीं होगा उनको ना आपको होगा। यानी बाज़ दफ़ा हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बहस करते हैं। तो बहरहाल आप याद रखिए कि ये रोज़ा भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो अल्लाह ने आपके मेरे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया, और ये वो महीना है कि जिसकी इबादत अल्लाह को हकीकत में बड़ी प्यारी होती हैं। दिल करता है कि जल्दी से रमज़ान है, किसका दिल कर रहा है, इस साल आपने रमजान में क्या करना है? किधर हैं आपके बड़े? हैं हैं दौरे कुरान करना है सबने? पिछले सालों में आपने किया पूरा क्लास के साथ साथ दौरे कुरान हुए? इस साल जो आप दौरे कुरान करेंगे ना, फिर आप मुझे बताएंगे कि अब आपको फ़र्क क्या पड़ा, यानी आपको खुद महसूस होगा कि अब आप मिच्योर हो गए। ये जो कुरान की बात, कुरान की और से और चीज़ें जो आती रहती हैं ना, ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से आपके अंदर एक मेच्योरिटी ला रही हैं। अभी आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन पुख्तगी, आपको कई आयतें अब याद हो जाएंगी, और इंशाल्लाह जो आपका नूरुल्लाह नूर शुरू होगा उसके बाद तो ज़ुबान पे आयतें जारी हो जाएंगी। फेवरेट आयतें आपकी? जी तो आपको हमेशा हर साल इजाज़त होती है करने की, मैंने तो कभी नहीं रोका। आप इससे भी अच्छे माहौल में करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब देखिए रमज़ान रोज़े का मौजू तो पूरा कर दिया, अब टोटल ओवरऑल रमज़ान एक बड़ा खूबसूरत महीना। चंद स्टेप्स में दो चार चीज़ें जो नोट कर लेते हैं कि हम क्या चीज़ रमज़ान के ख़ास नाम के साथ जो चीज़, यानी रमज़ान की क्या खूबी है, कर दूँ कि छोड़ दूँ, शौक है, यानी ये इबादत भी हैं। लेकिन अमूमन देखिए रमज़ान का महीना है ही बड़ा खूबसूरत। अगर आप इसकी सिर्फ खूबियाँ देखें तो शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इंसानियत को सबसे प्यारा तोहफ़ा रमज़ान में मिला, और वो क्या है, कुरान सूरह बकरा 185। बरकतों वाला महीना है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतानों को बंद कर दिया जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रमज़ान की खूबियों में अगर आप देखें तो एक रात ऐसी आती है जो हज़ार रातों से बेहतर है, सूरत कदर आए 3। सारी आसमानी किताबें और सहीफे इसी महीने में नाजिल किए गए, मुस्नद अहमद जिल 7 1719। फिर इसी तरह से इसमें जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, जहन्नुम के बंद किए जाते हैं, बुखारी 1898। फिर रमज़ान में अल्लाह ताला रोज़ाना जन्नत को संवारता और मुजयन करता है, यानी उसको ब्यूटीफाई किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, मुसनद अहमद 7904। फिर इसी तरह फरिश्ते रोज़ेदारों के लिए दुआएं करते हैं, रमज़ान के आखिरी रातों में रोज़ेदारों की बख्शिश होती है, और सबसे बड़ी बात है एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का महीना है, मुस्लिम 550। और रमज़ान की खूबी, रमज़ान का उम्रा सवाब में हज के बराबर होता है, बुखारी 1863। और रमज़ान की हर रात जहन्नुम से आज़ादी की रात है, सही इब्ने माजा और तिरमिज़ी, काफ़ी हवाले हैं इसके, तिरमिज़ी का लिख लीजिए 682। अब रमज़ान की इबादत में हर नेकी का काम करने का ज़्यादा अजर होगा, ख़ास तौर पे हम रोज़ा रखते हैं, उसका भी सबको पता है, इसके मैं दलाइल नहीं लिखाऊंगी इस वक्त, क्योंकि ये आप वेलकम रमज़ान के लेक्चर्स में से लिख सकते हैं, या फिर किताबु सौम जो है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ सदका खैरात कसरत से कीजिए, अजर बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी तेज़ हवाओं की तरह सखी हो जाते थे। फिर रात का क़याम, जिसको तरावी या क़ियामुल लैल कहा जाता है, इसको आदत बनाएं। चौथी चीज़ तिलावत कुरान मजीद, लेकिन गिन गिन के ना पढ़ें कितने पढ़ लिए, बल्कि अगर एक एक लफ्ज़ पे गौर व फिक्र करते जाएंगे तो इंशाल्लाह उससे वो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर इसी तरह से एतिकाफ़, रमज़ान की रातों का एतिकाफ़ है। फिर इसी तरह से रमज़ान में आप अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कसरत से कीजिए, और खूब खूब मेहनत करना, रमज़ान का जो पैगाम है आखिरी अशरे में हद कर दीजिए। फिर इसी तरह आठवां काम हम कर सकते हैं, लैलतुल कदर की तलाश, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलेगी, इसके अलावा नहीं। पढ़िए ज़रा मिलकर लैलतुल कदर की दुआ। आप इतना लहक लहक के क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ्व फाफू अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। तिरमिज़ी 3513। और एक जुमला आप और अपने लिए भी लिख लें कि मुझे भी तौफीक दे कि मैं दूसरों को माफ़ कर दूँ। बाज़ दफ़ा हम अल्लाह से वो मांग रहे होते हैं जो हम दूसरों को नहीं देते, पहले अपने आप को दूसरों के लिए अवेलेबल करें कि मैंने तुम्हारी हर बात को माफ़ किया, जो की जो नहीं की जो करोगे उसको माफ़ कर दें। फिर नेक्स्ट थिंग उम्रे का अहतमाम इस महीने में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक ख़ास माहौल होता है और जितनी इफ्तारियां वहां बढ़ती हैं दुनिया में कहीं नहीं बढ़ती। मुझे अल्लाह के अलगनी होने का एहसास रमज़ान में हज और रमज़ान में मक्का और मदीना जाके होता है। वासियुन अलीम, फिर रज़ाक, कैसे अल्लाह खिलाता है, ऐसे कंटेनर्स के कंटेनर्स हैं और वो लोग ऐसे आपके अंदर हाथों में बांट बूंट के चले जाते हैं। फिर इसी तरह कसरत से दुआएं मांगना चाहिए रमज़ान में, किन चीज़ों से रुकना चाहिए ख़ास तौर पे रमज़ान में, क्योंकि आम दिनों में भी बुराई है लेकिन वो भी है। नंबर एक, ख्वाहिशात की तकमील, क्योंकि रोज़े का तो मकसद ही यही है ना कि अपनी ख्वाहिशात को रोकिए। फिर दूसरी बात, झूठ से, बुखारी की रिवायत 1903 जो मैंने शुरू में आज बयान की थी कि जो झूठ बोल रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि वो रोज़ा रखे या खाए खाना छोड़े या पीना छोड़े। फिर इसे दिल लगी की बातें, शोर व गुल, लड़ाई झगड़ा, गालियाँ देना, ये सब रुकें। बुखारी की रिवायत है इसमें भी 1904। फिर इसी तरह मज़लूम की आँख से बचें, मुसलमान को वैसे ही नहीं ज्यादती करनी चाहिए किसी पे, ख़ास तौर पे रमज़ान में। जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी से सुना कि आपने फरमाया कि मुसलमान वो होता है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही मुस्लिम 162। फिर बहुत अहम बात बताने लगी और वो क्या है, बुग़्ज़ रखना छोड़ दें, एनिमिटी, दिल गंदा, दिल मैला। याद रखिए, दिल की बस्ती अल्लाह की बस्ती है, इसको अल्लाह ने पाक पैदा किए, इसको पाक रखिए। जब हमारे दिल नापाक होते हैं ना, हमारी सोचें नापाक होती हैं, हमारा उस इंसान के बारे में गुमान बदगुमानी में बदल जाता है और बदगुमानी के साथ किए हुए आमाल ज़ाया हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से दूरी की है। अल्लाह के नबी ने बुग़्ज़ और क़त्अ रहमी को बहुत बड़े जुर्म करार दिया था। सही मुस्लिम की रिवायत 6544 जाके पढ़िएगा और 6520। और मैंने ये बात तकरीबन हर साल के वेलकम रमज़ान के लेक्चर्स में एक बार ज़रूर किसी दर्स में की हुई है, कम अज़ कम करती हर लेक्चर में हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन उनके कबूल नहीं होंगे। जिन लोगों की नेकियां ऊपर नहीं जाती, उसमें एक लिस्ट है पूरी, लेकिन एक वो शख्स है जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना हो। और मुझे नहीं समझ आता कि दीनदारों के फिर रोज़े ज़्यादा कबूल होंगे कि दुनियादारों के, दुनिया लोग इतने कीने कम होते हैं, दीन के नाम पे कीने ज़्यादा होते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे। फिर अगली चीज़ जैसे रुकिए, हक तलफी, किसी का हक ना मारिए, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना, कोई रिश्वत लेकर, झूठ धोखा, या मासियाँ बेचारी काम करा लिया पैसे ना दिए, किसी मज़दूर से कोई चीज़ ठीक कराई पैसे ना दिए, फिर इल्ज़ाम तराशी, थोड़े से पैसे बचाने के लिए झगड़े करना, इससे रुकना है। फिर इसी तरह गुनाह, कबीरा से तो हर वक्त, सगीरा से भी रुकना है इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान में रुकेंगे तो बाद में भी रुकना आसान होगा। और बस लोगों से बावजूद कोशिश के भी रमज़ान में कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो ऐसी गलतियां होती हैं कि अगर वक्त से पहले तैयारी ना करें तो फिर वो दूर नहीं होती। और ये चीज़ शायद ही आप कभी सोच सकें, एक लिस्ट तैयार करते हैं इस साल के आने वाले रमज़ान के लिए, इस साल हमने नमाज़ें, क़्याम, तहज्जुद, तरावी, जो कुछ भी मुशक्क़त तो करते हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ गलतियां जो हमसे होती हैं उससे बचना है। ये लिस्ट आपने इंशाल्लाह जब भी बना रहे हैं इसकी एक्टिविटीज़ रमज़ान में बनाकर घरों में लगानी है आपने। नंबर एक, खाने में इसराफ, इफ्तारी और सहरियों के नाम पर करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ना। दूसरी बात, दिन का अक्सर हिस्सा सो के गुजारना, रोज़ा इसलिए नहीं आया। तीसरी बात, रोज़ा निभाने के नाम पे लहव लाइब के कामों में वक्त ज़ाया करना। कई लोग हैं, नऊज़ बिल्ला, माँ कहती है बच्चे को उसकी पसंदीदा मूवी ला के देती हूँ फिर रोज़ा रखाती हूँ, दिल लगा रहता है इसका, फिर ये अपनी पसंद की चीज़ें देखता रहता है। और एक माँ से पूछा कि बच्चे ने नमाज़ नहीं पढ़ी, कि ना 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 रोज़ा रख के सोया हुआ है, तो भाई जोहर जारी नहीं, उठ के असर के साथ पढ़ेगा क्यों, अगर जोहर में उठा फिर दिन बड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये रोज़ा नहीं होता। फिर इसी तरह से ये सोच कर कि सुबह उठना मुश्किल लगता है, सहरी रात को ही खा लेना, हालांकि देखिए उस वक्त उठने में जो मज़ा है और जो सहरी बनाने और खाने में उसकी एक अपनी लज्जत है। फिर इसी तरह पांचवी गलती जो तकवा के नाम पे होती है, इफ्तार में ताखीर करना, चलो थोड़ा और लंबा रोज़ा हो जाए कुछ और सवाब होगा। तो याद रखिए, बात वक्त की होती है, एक सहाबी जो रुक गए थे अल्लाह के नबी के हुक्म को सुनने के बावजूद, जबकि दूसरे उस सफ़र पे कूच कर गए, सलाम फेरा आपने तो पीछे एक सहाबी खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहा आप नहीं गए जहाँ सबको भेजा है? कहा अल्लाह के नबी मैंने सोचा आपके पीछे नमाज़ पढ़ने का अजर क्यों ना लूँ, और मेरी तो सवारी बड़ी तेज़ है, सब मुझे पता है किधर गए हैं, मैं अभी नमाज के बाद निकलूँगा, आप उनके साथ पहुँच जाऊँगा। आपने फरमाया तू पहुँच तो जाएगा लेकिन तू उनके अजर को नहीं पाएगा। समय ना वाताना, ये अपनी अकलों को कभी कभी खामोश रहना भी सिखाएंगे तो इंशाल्लाह दीन की रूह हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फिर इसी तरह से बद अखलाकी का मुजाहरा करना, क्यों? रोज़े से है ना, कोई बात नहीं, मासी की सख्ती आई हुई है, बाजी ने आज रोज़ा रखा हुआ है, बच्चों को डांट रहे हैं रोज़ा रखा हुआ है, ये भी गलत बात है। देखिए आपके रोज़े से किसी को क्या लगे, आपका रोज़ा है, आप बद अखलाक ना हो। फिर इसी तरह अक्सर लोगों का गीबत चुगली झूठ बोलने और मजाक उड़ाने में मसरूफ़ रहना, यानी रोज़ा रख कर सिर्फ टाइम किलिंग करना। फिर इसी तरह अक्सर लोगों को रमज़ान की फजीलत और रोज़े के अहकामात का इल्म न रखना, ये भी गलती है। फिर रात को रोज़े की नीयत के बग़ैर सो जाना और सुबह उठ के कहना रोज़ा रखा है। नमाज़े तरावी छोड़ देना, क्या ये गुनाह नहीं है? गुनाह ना भी होगा तो महरूमी नहीं है। फिर इसी तरह बास लोगों का रमज़ान के शुरू के दिनों में तो खूब मेहनत करना और बाद में सुस्ती का शिकार होना। एक इमाम साहब थे, उन्होंने कहा कि चांद के साथ लोगों की तादाद मस्जिदों में घटती बढ़ती है। पहला जब रोज़ा होता है अगले दिन यानी सुबह, तो मस्जिदों की क्या कैफियत होती है, बाहर तक उबल रही होती हैं। और आखिरी दिन क्या होती है, जिस दिन कुरान पूरा होता है, मिठाई का डब्बा मिलता है, हाँ, और बीच में जैसे वो चांद छोटे से बड़ा बड़ा फिर छोटे से बड़ा बड़ा, इस तरह हमारा अप्स एंड डाउन चलता है। कंसिस्टेंसी के साथ इबादत करना चाहिए। फिर एक और सुस्ती, जो एक गलती आपने इस साल नहीं करनी, शॉपिंग में मसरूफ़ रहना। किसकी? ईद की, और ईद गिफ्ट्स और ईद ड्रेस और ये वो। और फिर एक बहुत ही सिली मिस्टेक, बचगाना कह लीजिए, किडी, और वो क्या है, रमज़ान के जाने का इंतज़ार करना, कब जाएगा रमज़ान। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो और हमें इन सारे मौक़ों और मौसमों से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाला बना दे। फिर इसी तरह साइड इश्यूज नमाज तरावी और क़यामुल लैल के हैं, क्योंकि अहम हिस्सा है दीन का, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो आम दिनों की तहज्जुद रमज़ान की तरावी है, और क़यामुल लैल करना इबादुर रहमान की सिफत है, सूरत फुरक़ान 64 के क्या करते हैं वो इबादुर रहमान, रातों को अल्लाह के सामने क़्याम करते हैं। और बुखारी की रिवायत नोट कर लीजिए 2009 और मुस्लिम 1779 कि जिसने रमज़ान की रातों में बेदार रहकर नमाज तरावी पढ़ी ईमान और सवाब की नियत से, यानी यहाँ असल में क़्याम का जिक्र आता है लफ्ज़ में, तो उसके अगले पिछले तमाम गुना माफ़ हो जाते हैं। मन काम रमदानन ईमानं व एहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। तो नियत करके इरादे के साथ खूब लंबे लंबे क़याम किए जाएं ताकि अल्लाह ताला के रास्ते में खड़ा होना भी तो आए, इस्तकामत भी तभी आती है। फिर इसी तरह से ये है कि तरावी फ़र्ज तो नहीं है लेकिन नफिल इबादत में बहुत प्यारी इबादत है, हम पीछे इसमें बात कर चुके हैं। और आम दिनों में अगर आप तहज्जुद पढ़ते थे और रमज़ान में तरावी पढ़ लें तो उसके बाद तहज्जुद की ज़रूरत नहीं रहती। ये तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज का दूसरा नाम है। और इसी तरह से आप देखिए कि जब आप रात को खड़े हों और दिन को रोज़ा रखें, अल्लाह को कितना प्यार आता होगा आपके ऊपर, किस तरीके से अल्लाह सुबहान ताला आपके लिए फ़रिश्तों में खुशी के साथ आपका तज़किरा करते होंगे। फिर इसी तरह ये देखिए कि जब हम रात को अकेले में पढ़ते हैं, मसलन चले मस्जिद में गए आप तरावी पढ़ें, दो छोड़ दीजिए, घर में आके आधी रात को फजर से पहले एक घंटा उठते हैं आधा उठते हैं, दो रकत उसमें पढ़ लें, आप उसमें कुरान खोल कर पढ़ लें। अगर आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, घर में सारी औरतें हैं मिलके पढ़ लें, खुद अकेले में पढ़ लें, तरावी में तहज्जुद में देख के भी कुरान आप पढ़ सकते हैं ताकि ये कुरान पाक पूरा हो जाए। और इंशाल्लाह जब ये करेंगे तो फ़ायदा होगा। और आखिरी चीज़ जिससे रमज़ान पूरा होता है वो इतिकाफ़ है। एतिकाफ़ इसी के अंदर हाफ लाइन खींच कर नीचे एतिकाफ़ लिख लीजिए। एतिकाफ़ अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए जम कर इबादत करने को कहते हैं। ख़ास तौर पे जो रमज़ान का एतिकाफ़ है उसको मसनून एतिकाफ़ कहते हैं। मिनहाजुल मुस्लिम बड़ी प्यारी किताब है, आप भी अपने पास रखिए, दारुसलाम की छपी भी है। 446 पेज पे एतिकाफ के मसाइल मौजूद हैं, आप उसको देखिए। फिर इसी तरह सुन्नत है, अल्लाह के नबी हर साल रमज़ान में एतिकाफ करते थे आखिरी 10 दिनों का, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी मुबारक के जो आखिरी एतिकाफ था उस दिन 20 दिनों का एतिकाफ किया। फिर इसी तरह से एतिकाफ की अगर मन्नत मान ली जाए तो उसको पूरा करना चाहिए। और रमज़ान का एतिकाफ, ये जुमला नोट करिए, रमज़ान का एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में होता है। दलील सूरत बकरा 187, वन तुम आकिफून फिल मसाजिद, के तुम मस्जिदों में एतिकाफ करने लिए, और इसमें भी ख़ास तौर पे बड़ी मस्जिदें हैं, जामे मस्जिद जिसको कहते हैं, उसमें इख्तमाम होना चाहिए। बाकी एतिकाफ की सूरत में इंसान मजबूरी की हालत में मस्जिद से निकल सकता है, ज़रूरियात पूरी कर सकता है, खाने पीने का इख्तमाम नहीं, कोई ला के नहीं दे रहा, खाना भी खा सकता है। हत्ता के अल्लाह के नबी तो अपनी बीवी को रात को घर भी छोड़ने के लिए गए, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। तो बेसिक ज़रूरियात के लिए ये काम किया जा सकता है। और इसी तरह से फिर याद रखिए कि आखिरी 10 दिन में रखा किया जाएगा, और इन सारी रातों में से ताक रातों में क़याम करना चाहिए, ख़ास तौर पे इतिकाफ में जो हैं उनको ज़रूर ही ऐसा करना चाहिए। अल्लाह के नबी की जौजा की रिवायत है कि आप की बीवियां भी इतिकाफ करती थी, बुखारी की रिवायत है 2026 और मुस्लिम 2782। और अल्लाह मस्जिद ही के अंदर एक साइड पे कोना लगाना चाहिए। बाकी जो खुराफात है हमारे यहाँ, खुले आसमान के नीचे नहीं जाना, सर पे कोई एक थी तो इतिकाफ की सूरत ऐसी मस्जिद थी कि जहाँ बीच में सहन था, तब वॉशरूम पीछे थे टॉयलेट्स, तो वो जब आप मस्जिद के उस रूम से निकल कर टॉयलेट में जाती तो न जाने क्या कुछ अपने सर के ऊपर रखती कि किसी भी तरह उनकी नज़र आसमान पे या आसमान की नज़र उन पे ना पड़ जाए। तो ये भी तकल्लुफ़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, याद रखिए कि रोज़ा रखना एतिकाफ़ के लिए शर्त नहीं है। कई लोग हैं वो दायमुल मरीज़ हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, तो क्या एतिकाफ़ भी ना करें? करेंगे। ये बुखारी 2032 नंबर की ज़रूर हदीस है, आप देख लीजिएगा। फिर इसी तरह ख़वातीन भी करेंगी तो उनके लिए वही अहकाम आते हैं जो कि मर्दों के लिए हैं। और उसमें यानी एक औरत अपने बच्चों को घर में छोड़कर या परेशान करके या किसी और चीज़ में जाकर करे, तो इससे बेहतर है कि वो घर में रहकर जो इबादत कर सकती है अल्लाह ताला उसके लिए उस चीज़ को आसान कर देगा। और ऑफ कोर्स नफली इबादत है तो शोहर की मर्ज़ी भी होनी है इसमें। औरत इस्तखाज़ा है, पीरियड्स वाली औरत एतिकाफ़ नहीं कर सकती, इस्तखाज़ा वाली औरत है कर सकती है, क्योंकि वो एक बीमारी है, परेशानी है। कब शुरू करेंगे एतिकाफ़ को? 20 रमज़ान की शाम, यानी 20वीं का जो रोज़ा होता है ना वो मस्जिद में खोलना चाहिए। सारी रात बाहर रहें हुजरे से, ताक रात है, 21वीं रात होती है ना, इबादत कीजिए, फजर की नमाज के बाद फिर अपने हुजरे में दाखिल होना होता है। तो बेसिकली फिर 20 की असर के बाद मगरिब से पहले पहले मस्जिद में पहुंचने का इख्तमाम करना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो फिर रात से पहले किसी भी वक्त पर पहुँच जाएँ, नीयत दिल में होनी चाहिए, इरादा हो इतिकाफ़ का है। और क्या एतिकाफ करने वाला घर निकल सकता है किसी बीमार की आदत के लिए? नहीं जा सकता। जा रहा था, कोई बीमार मिल गया, इट्स ओके, लेकिन स्पेशली नहीं जा सकता। कोई फौत हो जाए, जनाजे में शामिल होने के लिए जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता। उसी मस्जिद में जनाजा होगा तो फिर इट्स ओके। कम अज़ कम मुद्दत कितनी है? वैसे तो आप कभी भी कर लें, लेकिन रमज़ान का इतिकाफ आखिरी 9 या 10 दिन, यानी 29वां होगा तो 9, और अगर 30 होंगे तो 10 दिन का होगा। और हजरत क्या एतिकाफ़ में कोई गया और उसको ज़मीन पे सोने की आदत नहीं, तो क्या बिस्तर या कोई मैट्रेस, कोई गद्दा, कोई चारपाई रख सकता है? रख सकता है। इब्ने माजा की रिवायत है 1774 कि अल्लाह के नबी जब एतिकाफ़ करते तो सतूने तौबा है वहाँ एक, उसके पास आपका बिस्तर बिछा दिया जाता था। करें क्या एतिकाफ़ में बैठकर? नवाफिल में मशगूल, अल्लाह का ज़िक्र, क़ुरान की तिलावत, तौबा इस्तग़फ़ार, दुआएँ करना और क़ुरान पाक में गौर व फ़िक्र करना, अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करना, लड़ाई झगड़े और फुखश कामों से परहेज़, ला यानी कामों यानी फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, यानी हर मुमकिन तरीके पे वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। और क्या किसी की बीवी मस्जिद में आ सकती है, उसको खाना देने आ भी सकती है, बल्कि उसकी खिदमत कर सकती है। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी के बालों में कंघी कर देती थी, कब? जब वो अपने हुजरे से सर बाहर करते और हज़रत आयशा आपके बालों में कंघा कर देती थी। ये बुखारी की रिवायत है 2029 और मुस्लिम 689। क्या इतकाफ़ के दौरान सो सकते हैं? ला ताखुज़ुहू सीनतुम वला नौम, अल्लाह के सिवा हर एक को सोने की हाजत है, खाना पीना सोना सब जायज़ है, और अलग से हुजरा अपना अंदर बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर एक औरत एक इतकाफ़ में बैठी, पीरियड्स आ गए, फ़ौरन निकल जाएगी मस्जिद से। अबू दाऊद की रिवायत है 232। आप में से बहुत सारों के जहन में एक सवाल, मुझे पता है घूम रहा है कि औरत फिर ना मस्जिद जा सके तो घर में कर ले, है सवाल जहनों में? क्या आपके सबके क्लियर हैं? तो ना रखे, ना करे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। देखिए, आप में से कोई ये कहते हैं तवाफ़ ही करना है, अब खाना काबा नहीं जा सकती तो मैं अपने शहर में कहीं कर लूँ। कुछ इबादत कुछ मखसूस चीज़ों में, और अल्लाह ने आपको मुझे मुकल्लफ़ नहीं किया। सीधी सी बात है, किन कामों से इतकाफ़ ज़ाया हो जाता है? नंबर एक, मुर्तद हो जाना, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ऐसी वह बुरी वबा पड़े। कबीरा गुनाह का कोई इरतकाब हो जाए, मुबाशरत करे, कोई शौहर बीवी का ताल्लुक हो जाए, और बिला ज़रूरत सिर्फ ऐसी दुनियादारी के नाते से करे। और इसी में फिर लैलतुल कदर भी आएगी, और उसकी कोशिश और ख्वाहिश करनी चाहिए, वो अपनी जगह एक बहुत ही खूबसूरत इबादत है, और इसको करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और फिर लैलतुल कदर की बहुत सारी फजीलतें आप सूरत अल-क़दर की तफसीर की रोशनी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये रोज़े का टॉपिक पूरा हुआ। एक चीज़ जो रमज़ान के फ़ौरन बाद और ईद से पहले करने की है, उसको सदक़ा फितर कहते हैं। रोज़े की हालत में की हुई कमी बेशियाँ कफ़ारा है उसका, ये फितराना भी बोलते हैं इसको। ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए, और ईद रमज़ान के आखिरी दिनों में, बहुत पहले भी नहीं कर सकते। ये असल में ईद की तैयारी होती है, खुशी की भी बात होती है, कफ़ारा भी होता है, शुक्राना भी होता है, सब पे फ़र्ज़ है, घर के बच्चे बच्चे पे, हत्ता के मुसलमान गरीब अमीर सब पे। ख़ुद कोई नहीं दे सकता तो कोई उसकी तरफ से दे देगा। हाँ, बहुत ही कोई मुफलिस कल्लाश है तो कोई और बात है। सही मुस्लिम 2278 है। फिर इसी तरह ये सिर्फ मुसलमानों की तरफ से होगा, घर में मेहमान आए तो मेज़बान उसकी तरफ से देगा, और अगर वो ख़ुद देना चाहें तो फिर उनकी मर्ज़ी है। बुखारी 1504 इसके अंदर है। फिर इसी तरह से ये है कि इसको बाज़ लोग कहते हैं सिर्फ गल्ले की सूरत में देना चाहिए, बाज़ कहते हैं कि पैसे की सूरत में दे। अल्लाह के नबी के दौर में गल्ला ही होता था सिर्फ, आज के दौर में पैसे भी दे देते हैं, दोनों ही ठीक हैं। आप पैसे दें और किसी से कि उसका गल्ला ले। देखिए, फिर मैं कहती हूँ कि इन बातों पे शिद्दत ना बरतें। इस मसले पे भी आज उम्मत में फिक्की इख्तलाफ है। कुछ सिर्फ कहते हैं गल्ला देना है, जी आप पैसे दे रहे हैं आपका तो हुआ ही नहीं। इतने बड़े मुफ्ती ना बने आप दूसरों को उनकी मर्ज़ी का काम करना दें। मकसद क्या है? कमज़ोरी और कमियों को दूर करना और गरीबों को खुशियों में शामिल करना। इसी से कई लोगों के ईद के जोड़े बन जाते हैं। ईद की नमाज से पहले दिया जाए, बुखारी 1503, और ईद से एक दो दिन पहले दे दें तो भी खर्च नहीं है। इब्ने बाज का फतवा है, जिल्द नंबर 1 पेज 27 में। फिर कोई भी जिन्स जो खाते हैं, मसलन हमारे यहाँ अमूमन गंदम खाई जाती है, चावल है, मक्का में अरब में लोग खजूर खाते थे, तो जौ मकई वट एवर किसी सूरत में भी आप दे सकते हैं। होता कितना है क्वेश्चन हर मुल्क के एतबार से। तो याद रखिए, एक सा हिजाज में जो एक पैमाना चलता है ना, जैसे यहाँ लीटर्स किलोस और ग्राम्स चलते हैं, सा बोलते थे, तकरीबन 2.5 किलो वज़न कोई भी चीज़ का, ठीक है। बुखारी की रिवायत है 1506, और कीमत दे देंगे तो उसकी लगा लें। अब आप कहेंगे हम यहाँ रहते हैं, पाकिस्तान के चावलों की कीमत लगाएं कि यहाँ की लगाएं? तो जब रोज़ खाते हैं तो पूछते हैं, जब यहाँ खाते हैं तो यहाँ की दे दें, पाकिस्तान में जाके खाएंगे तो वहाँ की दे जाएं। ऐसी चीज़ों पे भी वही बातें दिल खुला रखें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सारी कमियाँ बेशियाँ जो हमारी इबादत में होती हैं उसको दूर करे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। एक आधा जी, कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि कुरान की तिलावत इनफरादी इबादत है, लेकिन जब मिसाल मस्जिद नबवी में इस सवाल हमें मौका मिला और सॉरी हरम में थे, तो वहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है। देखिए, हकुल्लु मारूफ इन सदका कर सकते हैं, ठीक है जी।
इंडिया पाकिस्तान में है, नहीं है कि औरतें मस्जिद
ठीक है, ना करें फिर, ना करें जी। और एक रोज़ा एक मिस्कीन का खाना, कैलकुलेट करके उतने लोगों का पैसे जो है गरीबों को दे दीजिए, यानी एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना। वो कज़ा और फिदिया इस सरकमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है ना। कुछ चीज़ें जैसे अभी बताया कि आप रोज़ा कभी रख ही नहीं सकते, मतलब शुगर पेशेंट है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी चला गया, मिसाल है, तो सिर्फ फिर कफ़ारा काफ़ी होगा, यानी सिर्फ पैसे देने होंगे फिदिया। लेकिन जब कर सकते थे फिर ईज़ ले ली, देखिए ना ईज़ ले ली ना कि सफ़र है तो नहीं रखा, तो फिर आपको यानी कम अज़ कम फ़िदिया तो दे ही दें, ताकि अल्लाह ना करे कि कुछ मसला हो जाए तो कुछ कंपनसेशन हो, लेकिन रोज़ा रखना होता है। ठीक है जी जी आप शहीन नाम है इनका जी। मंडे नहीं कहा मैंने, जुम्मे को खाली जान हराम नहीं कहा, हराम नहीं कहा, मकरूह। देखिए यानी सिर्फ जुम्मे का रोज़ा ये सोच के कि जुम्मा एक बड़ा अहम दिन है इस दिन रोज़ा रखें, ये नहीं रखना चाहिए। रख सकते हैं, इवन वैसे भी आप अल्टरनेट रखते हैं, जो लोगों के घरों में रोज़े रखते हैं अल्टरनेट, उनको पता है हर 2 वीक के अंदर एक जुमे का भी आएगा अल्टरनेट में, तो देखे ना फिर एक पीर को नहीं भी आएगा, एक जुमेरात को आएगा तो एक जुमेरात को नहीं आएगा, अल्टरनेट करके देखिए, क्योंकि 7 दिन जो है, तो बहरहाल उसमें जो भी बेहतर हो अल्लाह आसान करे जी। वक्ती दो, एक जो एक क्राइटेरियन समझिए, वक्ती उजर पे कजा और फिदिया, अबदी उजर सिर्फ फिदिया। ठीक है चलिए, 15 मिनट की ब्रेक मनाकर आइए, फिर हम सब हज करेंगे, ये तो मैंने प्यार से कहा है आपको, अल्लाह करे हम सब मिलके हज भी करें। जजाक अल्लाह खैर। एग्जैक्टली 12 मिनट के बाद वापस आने की कोशिश करें ताकि आप इसको इंजॉय कर सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट्स बंद कर दीजिए ज्वेरिया।